संस्कृत्य नरम श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद दूसरा अध्याय देवताओं द्वारा गर्भस्थ कृष्ण की स्तुति श्लोक क्रमांक 13। गर्भ संकर्षणात्तम वै प्राहु संकर्षण भुवि रामेति लोक रमणात् बलभद्रम बलोच्छया। अनुवाद। देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में भेजे जाने के कारण रोहिणी का पुत्र संकर्षण भी कहलाएगा। वह गोकुल के सारे निवासियों को प्रसन्न रखने की क्षमता होने के कारण राम कहलाएगा और अपनी प्रचुर शारीरिक शक्ति के कारण बलभद्र कहलाएगा। तात्पर्य, बलराम को संकर्षण, बलराम या कभी राम नाम से विख्यात होने के ये कुछ कारण हैं। महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे में जब राम को बलराम कहा जाता है तो कुछ लोग आपत्ति करते हैं। भले ही भगवान राम के भक्तों को इसमें आपत्ति हो, किंतु बलराम तथा भगवान राम में कोई अंतर नहीं है। श्रीमद् भागवत के इस स्थल में बलराम को राम भी कहा गया है, रामेति। अतः भगवान बलराम को भगवान राम कहना बनावटी नहीं है। जयदेव गोस्वामी ने भी तीन रामों का, परशुराम, रघुपति राम तथा बलराम का उल्लेख किया है। ये सभी राम हैं। हरे कृष्ण। आज के श्री बलराम जयंती के इस पवित्र दिवस पर आप सबका स्वागत है। आज हम संक्षिप्त रूप में ये चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि बलराम जी आखिर है कौन और हमारे जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में बलराम जी का क्या महत्व है, क्या जरूरी है, किस तरह से बलराम जी की जो कृपा की महिमा है उसका हमारे जीवन में जरूरत क्या है, कैसे है, किस लिए है, क्या हमें इस बलराम जी की कृपा प्राप्त करने से क्या रोकता है, हम ये कृपा है क्या और इसे प्राप्त करने की योग्यता हम कैसे प्राप्त करें, यह संक्षिप्त रूप में आज की चर्चा। तो सर्वप्रथम बलराम जी हैं कौन। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य चरितामृत में श्री नित्यानंद प्रभु की महिमा बताते हुए जो बलराम जी से अभिन्न है, ब्रजेंद्र नंदन जी शचिसुत होइलो से बलराम होइलो निताय, तो नित्यानंद प्रभु के वर्णन करने से पहले बलराम जी की महिमा करते हैं कि बलराम कौन है। ये दिखाते हैं, तत्पश्चात कहते हैं कि वही बलराम श्री नित्यानंद है। कहते हैं सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान तहार द्वितीय देह श्री बलराम। सर्व अवतारी कृष्ण, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, एते चांशकलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इंद्रारि व्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। श्री भागवत में व्यासदेव सारे भगवानों भगवान के अवतारों का वर्णन करने के बाद ये श्लोक कहते हैं, जो भागवत का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है। सारे श्लोक इस श्लोक के संपर्क में हमें देखना पड़ेगा। परिभाषा सूत्र तो कहते हैं कि सर्व अवतारी कृष्ण रामादिमूर्ति शुकला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम करोत् भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं संभवत् परम पुमान यो। यही परम सत्य हैं और उनके कई अनंत अवतार हुए विष्णु तत्व। तो सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तहार द्वितीय देह श्री बलराम, यानी भगवान श्री कृष्ण के प्रथम विस्तृत रूप, सर्वप्रथम विस्तृत रूप ये बलदेव, ये बलराम। एक स्वरूप दोहे भिन्न मात्रा काय आद्य काम व्यूह कृष्ण लीला रसहाय। फिर कहते हैं एक ही स्वरूप दोहे भिन्न मात्रा काय, दोनों की स्वरूप शक्ति में दोनों में कोई भेद नहीं है। एक ही स्वरूप भिन्न मात्रा काय, केवल दो स्वरूप, दो शरीर है उनके अलग अलग, पर दोनों का स्वरूप एक ही है, दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है। जितने कृष्ण के अंदर जितने शक्तिमान है, सब कुछ है, सारे शक्ति श्री बलराम जी में भी है। आद्य काय व्यूह कृष्ण लीला रसहाय, विस्तृत होकर क्यों विस्तृत होते हैं अपने आप का भगवान, ताकि भगवान की जो सुंदर लीला है, भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं, उन लीलाओं का सहयोग, मदद करने के लिए, लीला में सहायता करने के लिए ये अलग अलग स्वरूप भगवान ही लेते हैं अपनी लीला में सहायता के लिए। और वो सारे लीलाओं के जो सारे अवतारों के जो स्रोत हैं वो बलराम जी से आते हैं। से बलराम गोसाई मूल संकर्षण पंचरूप धरी करे न कृष्ण सेवन। से बलराम गोसाई मूल संकर्षण, मूल संकर्षण है वो, और पंचरूप धरी करे न कृष्ण सेवन, पांच रूप लेते हैं कृष्ण की सेवा के लिए। तो पांच रूप कौन है? आपने करे न कृष्ण लीला रसहाय सृष्टि लीला कार्य करे धरी चार काय। सृष्टि लीला, ये पूरी भौतिक सृष्टि और वैकुंठ लोक में आध्यात्मिक सृष्टि जो है, ये सृष्टि में मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए चार रूप ग्रहण करते हैं बलराम जी, चार अलग अलग रूप। और वैयक्तिक रूप से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए पांचवा रूप धारण करते हैं। तो ये चार रूप क्या है, जो आध्यात्मिक सृष्टि और भौतिक सृष्टि में मदद करते हैं। इसके बाद में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं संकर्षण कारण तो यशाई गर्भोदशायी च पयोब्धिशायी शेषस्य यस्यां शकलासनित्या नन्दाख्यरामं शरणं ममास्तु। मैं उस नित्यानंद राम को प्रणाम करता हूं जिसके अंश, जिसके विस्तृत स्वरूप हैं संकर्षण, भगवान श्री कृष्ण से सर्वप्रथम उनका विस्तृत, पहला विस्तृत स्वरूप है बलराम, मूल संकर्षण, और उनसे चतुर्व्यूह निकलती है, संकर्षण, प्रद्युम्न, वासुदेव, अनिरुद्ध। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये जो चतुर्व्यूह है वहां से सारे विष्णु तत्व प्रकट होते हैं। तो ये मूल संकर्षण वो है, फिर वहां से आध्यात्मिक संसार की सृष्टि होती है। गोलोक वृंदावन भी बलराम जी का ही स्वरूप है, उसमें जो कुछ भी देखते हैं संपूर्ण गोलोक धाम बलराम जी का ही स्वरूप है, भगवान की लीला हेतु। और इस भौतिक सृष्टि के हेतु तीन रूप ग्रहण करते हैं, कारणा तोयशाई, एक विष्णु है महाविष्णु, कारणोदकशाही विष्णु। ये थोड़ा टेक्निकल विषय है, हम इस भौतिक संसार में हैं, इस भौतिक संसार से परे है परव्योम। ये जो आकाश देखते हैं ना, ये आकाश, भौतिक संसार में हम आकाश देखते हैं, इस आकाश से परे, ये ब्रह्मांड के परे, अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं भौतिक सृष्टि के, उससे परे है परव्योम। परव्योम यानी भौतिक आध्यात्मिक संसार, और वहां अनंत कोटि वैकुंठ लोक हैं, और उसमें सर्वोच्च है गोलोक, कृष्ण लोक। ये खबर साधारणतः जिसको शास्त्र में विश्वास नहीं है उनको नहीं मिल पाएगा। गीता में भी भगवान कहते हैं परस्तस्मात् तुभावोन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत् सुन विनश्यति। परः तस्मात् तुभावः अन्यः, हम इस भौतिक संसार में जो 24 तत्वों का बना हुआ पूरा ब्रह्मांड भौतिक संसार देखते हैं, इससे परह तस्मात् तु भावः अन्यः, और एक दूसरा संसार है व्यक्त अव्यक्तात् सनातन, व्यक्त और अव्यक्त से परे है और वो सनातन धाम है। यह सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति, इसके नष्ट होने पर भी उस परव्योम का नाश नहीं होता। आधुनिक वैज्ञानिक गण इस तत्व को समझ नहीं पाते हैं, क्यों? क्योंकि अपने आंखों से जब तक देखता नहीं, देखे नहीं जाते, या अपनी बुद्धि से जब तक वो नहीं समझ पाते उन चीजों को, वो विश्वास नहीं करते। थोड़े दिन पहले मैं एक स्कूल में गया था, वहां एक हमारे गोपाल गार्डन स्कूल में, वहां के इतिहास के जो शिक्षक हैं उन्होंने मुझसे निवेदन किया कि वैदिक संस्कृति के बारे में हमारे इतिहास के पुस्तक में एक पाठ है, तो कृपया आप इसको पढ़ाइए, क्योंकि वर्णाश्रम के बारे में लिखा हुआ है उसमें, तो आप अगर कहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो उनका इतिहास का पुस्तक लिया मैं, पढ़ा, बहुत दुख हुआ। बंदर दिखाया है, फिर वन मानुष दिखाया, फिर चलते 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 आदमी बन गया, ऐसा चला है, फिर उठ रहा है, फिर उठ रहा है, फिर खड़ा होकर चल रहा है, चार पांच ऐसे चित्र दिखाया। तो मैंने टीचर को कहा आप चाहती हूं मैं आके बोलूंगा, मैं बोलने के बाद ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे, क्योंकि मैं कुछ और बोलूंगा, वो अगर परीक्षा में लिखेंगे तो उनको जीरो मिलेगा। बोले नहीं नहीं आप बताओ, फिर बाद में मैं बताऊंगी कि परीक्षा में लिखने का क्या है और समझने का क्या है। तो फिर मैंने सोचा कि ये सही है क्या, परीक्षा में लिखने का कुछ और समझने का कुछ और। बोले ये भी एकदम वैदिक संस्कृति के सम्मत है, क्योंकि एक महाजन ने कहा है ऐसा। सातवें स्कंद में पांचवें अध्याय में प्रहलाद महाराज के बारे में वर्णन करते हुए कहा गया है, जब शंडा अमरका, प्रोफेसर शंडा और प्रोफेसर अमरका हिरण्यकशिपु के यूनिवर्सिटी में जब शिक्षण देते थे तो धर्मार्थ काम मोक्ष के बारे में बता, धर्मार्थ काम मोक्ष नहीं, साम दान दंड भेद कैसा करके ये शत्रु है ये मित्र है दोनों को सेपरेट करके लड़ाई करना, तो ये चल रहा था। हिरण्यकशिपु के जो जन्म दिवस है उस दिन नेशनल हॉलिडे, उनके भाई हिरण्याक्ष की चाचा जी उसका भी एक हॉलिडे, भगवान के लिए नहीं, कृष्ण जन्माष्टमी के लिए छुट्टी नहीं, रामनवमी के लिए छुट्टी नहीं, दुनिया भर के लिए छुट्टी, एक पिता के कोई चाचा जी के लिए उनके लिए छुट्टी। ये संस्कृति है हमारी दुर्भाग्यवश। तो जब शंडा अमर का ये सिखा रहे थे तो लिखा गया है प्रहलाद महाराज बड़े ध्यान से सुनते थे और उनका एग्जैक्ट उत्तर जैसा उनको चाहिए देते थे, पर हृदय से उन्होंने एक चीज भी स्वीकारा नहीं। तो मैंने बच्चों को बोला देखो ये महाजनों ये इनका तो सपन था, तुम महाजन के पथ पे चल रहे हो कोई चिंता मत करो, परीक्षा में जो लिखना है वो लिखो पर हृदय से समझने की बात जो ये समझ लो। तो जो आधुनिक विज्ञान है उनका कहना है कि पहले के लोग वनवासी जैसे थे, कुछ नहीं आता था, और अभी प्रगतिशील है ये, अभी हमने प्रगति किया है पिछले कुछ सालों में, वैज्ञानिक की प्रगति होने के बाद, विज्ञान की प्रगति होने के बाद अब हम लोग, पहले बंदर थे, बंदर से धीरे 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 मनुष्य बने, यानी ये प्रगतिशील समाज है। पर वैदिक संस्कृति उल्टा कहता है ये प्रगतिशील नहीं है, ये तो उल्टा है, सत्युग था और अभी कलयुग है, घटता जा रहा है। ततश्च अनुदिनम धर्म सत्यम शौचम गल क्षमा दया कालेन बलिना राजन नंक्षति आयु बलम स्मृति। काल के प्रभाव से हे राजन सत्य शौच क्षमा दया आयु बल स्मृति सब घटती जा रही है। स्वर्ण युग था सत्युग और अभी जो है ये कलयुग है, लोहे का युग है ये। पहले संस्कृति बहुत ही प्रगतिशील थी, अभी घटती जा रही है कलयुग के प्रभाव से, पूरा उल्टा। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, बंदर से नहीं आया सब कुछ, विस्फोट से नहीं आया सब कुछ, कहां ब्रह्मा, भगवान की सृष्टि पूरे मतलब योजना बनाने के बाद सृष्टि की, 84 लाख योनियां एक साथ ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, कहां वो और कहां ये, बाय चांस ये सब हो रहा है सब कुछ, इसके पीछे कोई करता नहीं, ये आसुरिक है। छठे अध्याय में, सोलहवें अध्याय में असत्यम अप्रतिष्ठम दे जगदाहुर अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत काम हेतुकम। असत्यम अप्रतिष्ठम ते, इस संसार की कोई प्रतिष्ठा नहीं है, कोई फाउंडेशन नहीं है। जगद आहुर अनीश्वरम, इसके पीछे किसी ईश्वर नहीं है, कोई नियंत्रण करता नहीं है, बाय चांस एक विस्फोट हो गया उसमें से सब निकला केमिकल, केमिकल से कुछ जान आ गया, जान में से अभी तुम चलते फिरते आदमी बन गए, बंदर था पेड़ से नीचे छलांग मारा पैर आ गया पूंछ चला गया, पूंछ वाला अभी भी ऊपर है, बीच वाला किधर है, वो मिसिंग लिंक है, अभी समझे नहीं, बाद में बताएंगे जब डिस्कवर होगा। तुम्हें कहा क्या कहूं इसको, पर शास्त्र में साफ साफ वर्णन है इस संसार तो दूर की बात, इस संसार से परे क्या है, परव्योम, और उसका सर्वश्रेष्ठ जो है गोलोक धाम उसका भी वर्णन है। तो गोलोक धाम जो है उसके तीन भाग हैं, द्वारका, मथुरा और वृंदावन। गोलोक के तीन भाग हैं कृष्ण लोक के, उसको विश्वेत द्वीप कहते हैं वहां के। वहां से अनंत कोटि वैकुंठ है, तीन चौथाई सृष्टि का तीन चौथाई हिस्सा तो आध्यात्मिक संसार है, उसका एक चौथाई हिस्सा भौतिक संसार है। फिर सृष्टि हुई और इस एक कोने में एक चौथाई हिस्सा जो है एक कारण समुद्र बन जाता है और उस समुद्र के इस स्तर पर भौतिक सृष्टि है। तो कारण समुद्र में लेटते हैं बलराम जी के अंश कला। यस्यैक निश्वसित कालमथावलंब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदंडनाथा। ब्रह्म संहिता में वर्णन है कि यस्यैक निश्वसित, महाविष्णु संकर्षण से बलराम जी से जो पहला नारायण आते हैं उनमें से महाविष्णु आते हैं, कारण समुद्र में लेटते हैं, लेटते हैं और जैसे सांस छोड़ते हैं तो उनके श्वास से निश्वसित कालमथावलंब्य अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं। हर एक ब्रह्मांड में वही महाविष्णु गर्भोदकशायी के रूप में प्रवेश करते हैं और उनके शरीर से एक दिव्य पसीना निकलता है, हमारे जैसे पसीना नहीं जो दुर्गंधित है और उसको सेंट लगाना पड़ता है दुर्गंध तो दूर करने के लिए। भगवान के शरीर से निकला हुआ जो है जो पसीना वो एक छोटे से छेद से इस संसार में आए गंगा जी परम पवित्र। तो उस ब्रह्मांड में हर एक ब्रह्मांड में गर्भोदकशायी लेटते हैं जिनके नाभि से कमल निकलता है जहां ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और उस नाभि के डंडे उस कमल के डंडे में ये 14 लोक प्रकट होते हैं। और फिर हर एक ब्रह्मांड के ऊपर एक श्वेत द्वीप होता है और वहां परमात्मा के रूप में क्षीरोदकशायी विष्णु कारणों तोयशायी गर्भोदशायी च पयोधिशायी। इस तरह से ये तीन विष्णु हैं इस भौतिक संसार भौतिक सृष्टि के निर्माण के लिए और तीनों जो हैं नित्यानंद प्रभु के विस्तृत रूप हैं। कौन है ये नित्यानंद आप सोचिए, एक ही स्वरूप भिन्न मात्र काय, ये बलराम जी। तो ये भौतिक संसार के सृष्टि के हेतु। जब तक शास्त्रों में श्रद्धा नहीं होगी तब तक ये बात हम नहीं समझेंगे। ये अचिंत्य शक्ति है भगवान की, अचिंत्य शक्ति। आप सोचिए एक वटवृक्ष, उसमें आप देखेंगे छोटे छोटे फल होते, छोटे छोटे फल वटवृक्ष में, और एक एक फल के अंदर हजारों बीज होते हैं। उस बीज को नीचे डालो तो उसमें से वटवृक्ष निकलता है, उस वृक्ष में हजारों हजारों फल निकलते हैं, हर एक फल में हजारों बीज होते हैं, और उस बीज में से एक को डालिए तो फिर से एक वटवृक्ष निकलता है, उसमें हजारों हजारों फल होते हैं, उसमें हजारों हजारों बीज होते हैं, उसका एक बीज निकाल के डालिए तो क्या आता है, वटवृक्ष आता है। इस तरह से संसार चल रहा है। कहां से आई, क्या कोई वैज्ञानिक ऐसा चीज निर्माण कर सकता है? एक कंप्यूटर रखो, दो कंप्यूटर को साथ में रखो तो 9 महीने के बाद तीसरा कंप्यूटर आ जाएगा अपने आप। कितना अच्छा होता ऐसा होता तो, ऐसा सॉफ्टवेयर बना के डालो उसमें। क्या भगवान ने सृष्टि की है, अचिंत्य शक्ति, अचिंत्य शक्ति, सोच नहीं सकता आदमी, पर फिर भी मूर्खतावश विश्वास नहीं। क्यों? मूढ़, इसको कहते हैं मूढ़ बुद्धि। पर जब आचार्यों के द्वारा सुनते हैं परंपरा में आए हुए, ये भी नित्यानंद प्रभु की कृपा है, बलराम जी की कृपा है, तब हम समझ पाते हैं। तो ये पहला स्वरूप हुआ, चार काय, महासंकर्षण, महाविष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु, क्षीरोदकशायी विष्णु। इससे संपूर्ण ब्रह्मांड, पूरी ब्रह्मांड कहता हूं, भौतिक सृष्टि और आध्यात्मिक सृष्टि का निर्माण केवल बलराम जी से हो रहा है। उसके कारण वही है, भगवान की लीला को मदद करने के लिए। और पांचवा जो स्वरूप है नित्यानंद प्रभु का या बलराम जी का, वो है शेष स्वरूप, अनंत शेष। शेष भी दो हैं, एक भगवान को सोने के लिए और दूसरा पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड को अपने सर में धारण करने के लिए। राई के दाने जैसे हर एक ब्रह्मांड अनंत शेष के सर के ऊपर है, ऐसे दो स्वरूप हैं अनंत शेष के भी। तो वो अनंत शेष जो हैं सब प्रकार से सेवा करते हैं भगवान श्री कृष्ण की, वैयक्तिक रूप से, पर्सनल सर्वेंट। ऐसा नहीं कि इनडायरेक्टली लीला में मदद कर रहे हैं, सृष्टि करके चले गए, नहीं, वैयक्तिक रूप से भी सेवा करते हैं। सर्वरूपे आस्वादये कृष्ण सेवानंद से बलराम गौर संगे नित्यानंद। कहते हैं सर्वरूपे आस्वादये कृष्ण सेवानंद, हर रूप में अलग अलग स्वरूप धारण करके कृष्ण की जो कुछ भी लीलाएं हैं सब लीलाओं में सब तरीके से मदद करते हैं। जैसे कोई एक ड्रामा बनाना है, कितना मदद चाहिए, लाइट वाला चाहिए, मेकअप वाला चाहिए, साउंड वाला चाहिए, डायरेक्टर चाहिए, प्रोड्यूसर चाहिए, कितने लोगों को चाहिए। इस तरह से भगवान की लीला में जो कुछ भी चाहिए, हर रस में भी श्री नित्यानंद प्रभु या बलराम जी मदद करते हैं, हर एक रस में, पांचों रस में नहीं छोड़, किसी कोई रस को नहीं छोड़े वो। तो इसीलिए उनका दूसरा नाम है शेष, अनंत शेष। क्यों अनंत? क्योंकि अनंत रूप से वो सेवा करते भगवान की। भगवान अनंत है तो उसके लिए अंत होने वाला कोई सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि अंत हो जाएगा उसका सेवा करते करते। तो अनंत भगवान की सेवा करने के लिए अनंत शक्ति वाला कोई व्यक्ति चाहिए, और इसीलिए भगवान अपने ही विस्तृत रूप है बलराम जी। केवल उनके अंदर वो शक्ति है, किस तरह से भगवान की अनंत लीलाओं में अनंत तरीके से जो जरूरतें हैं सब जरूरतों को पूर्ण करने के लिए उनकी सेवा के लिए तैयार, और इस तरह से सेवा करते हैं संपूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाए। संकर्षण या बलराम जी के अलावा और कोई ऐसा शक्ति नहीं है किसी में भगवान की सेवा में मदद करे सब तरीके से। और शेष का दूसरा नाम इसलिए है कि उनका जो आश्रय लेता है उसका भौतिक जीवन शेष। जब जो भी व्यक्ति बलराम जी का आश्रय लेगा, अनंत शेष का आश्रय लेगा, संकर्षण, शिव जी, पार्वती जी हमेशा संकर्षण का गुणगान करते रहते हैं। महाराज चित्रकेतु पांचवें स्कंद भागवत में संकर्षण के दर्शन किए, नारद मुनि हमेशा संकर्षण का गुणगान करते हैं ब्रह्मलोक में अपने पिताजी के, अपने ब्रह्मा जी के सभा में। भागवत में कई जगह वर्णन है संकर्षण जी का वर्णन। तो इस तरह से, और जहां तक सेवा का सवाल है, द अल्टीमेट वर्ड इन सर्विस इज बलराम, इसीलिए दूसरा नाम उनका शेष, उनसे बढ़कर वही उनका शेष, मतलब सेवा मतलब उसका शेष है अनंत बलराम, उससे बढ़कर कोई नहीं, इसीलिए उनका नाम है शेष। तो शांत रस में कैसा सेवा करते हैं, बहुत सुंदर श्लोक में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, छत्र पादुका शय्या उपधान वसन आराम आवस यज्ञ सूत्र सिंहासन। भगवत धाम में भगवान श्री कृष्ण की सेवा कैसे करते हैं, छत्र, आप देखे होंगे भगवान नरसिंह देव का मायापुर में छत्र, जब भगवान श्री कृष्ण जन्म लिए और मथुरा से वृंदावन की ओर जा रहे थे, वसुदेव जी लेके जा रहे थे, तो ऊपर से फन लेकर अनंत शेष बलराम जी आ गए उसी समय। वहां भी बलराम जी थे वृंदावन में, राह देख रहे थे, पूरा अरेंजमेंट कर रहे थे। भगवान आने से पहले देवकी के गर्भ में सातवें गर्भ के रूप में प्रवेश होकर पूरा अरेंजमेंट किया, ठीक ठाक सब कुछ है ना भगवान आने के लिए, जैसा मिनिस्टर आने से पहले उसके चेले चपाटे सब आके सब तैयार करके जाते, सब ठीक है कि नहीं। इस तरह से उस षड गर्भ जो निकला था उसके बाद जो दूषित हो गया था उसको शुद्ध करने के लिए बलराम जी गए, सब ठीक ठाक देखे, उसके बाद रोहिणी के घर में चले गए और बोले भगवान आ जाओ अभी आ सकते, एकदम फर्स्ट क्लास तैयार है सब कुछ। छत्र, छत्र पादुका, भगवान के पादुका जो हैं वो बलराम जी के विस्तृत रूप है। शैया, भगवान की जो शैया है वो भी शेष है। उपाधान, उपाधान मतलब क्या, तकिया, तकिया भी वही बनते हैं, बेड भी वही बनते हैं, वसन और जो भी वस्त्र पहनते हैं, पीत वस्त्र जो पहनते हैं भगवान, वो पीत वस्त्र जो है वो बलराम जी का ही स्वरूप है। और कुर्सी बैठने का आसन, जो भी आसन भगवान जी है, जहां भी आसन ग्रहण करते हैं वो आसन जो है वो बलराम जी। आवास, उनका निवास स्थान जो है गोलोक धाम जो है बलराम जी का ही विस्तृत रूप है। इसीलिए तिरुपति में जब रामानुजाचार्य गए तो वो तिरुपति के इस पर पैर नहीं रखे, वो बोले मैं पैर कैसे रख सकता हूं क्योंकि ये अनंत शेष है। जैसे हम देखते हैं बरसाना में, ब्रह्माचल सिखेलत सुकुमारी नंदीश्वर खेलत गिरिधारी, हरे मुकुंदा भज राधे गोविंदा। ब्रह्माचल खेलत सुकुमारी, ब्रह्मा जी पर्वत बन गए श्रीमती राधा रानी और उनके सारे गोपियों को अपने, उनका धूल सर पर लेने के लिए। नंदीश्वर शिव जी जो हैं, नंदीश्वर वो पहाड़ बन गए ताकि भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल वालों के साथ लीला करें, उनका सर का धूल मेरे सर पर मिलते रहे। इस तरह से अनंत शेष जो हैं वो पूरे निवास स्थान, भगवान का जो निवास स्थान है वो ही उनके विस्तृत है। यज्ञ सूत्र, भगवान का जो उपवीत है वो भी अनंत शेष है। सिंहासन, उनका जो सिंहासन है भगवान का वो भी अनंत शेष। इस तरह से शांत रस में हर तरीके से भगवान श्री कृष्ण की लीला में श्री बलराम जी मदद करते हैं। दास्य रस में भी अच्छी तरह से सेवा करते हैं उनकी, कभी उनका चरण दबाते हैं, कभी उनको गोद पे लेटाते हैं। साक्ष्य रस में भगवान के साथ बहुत सुंदर लीलाएं, दशम स्कंद में अलग अलग सुंदर लीलाएं, किस तरह से ग्वाल बाल के साथ जब जाते थे अलग अलग प्रकार से, कभी मोर जैसे नाचना, कभी पक्षी या बेडूक क्या बोलते हैं उसके जैसे फांदना कूदना, पक्षी उड़े तो उसके साथ उड़ते उड़ते जाने का प्रयास करना, इस तरह से बहुत सारे खेल कूद करते थे, गेंद खेलना साक्ष्य रस में। वात्सल्य रस में कभी कभी बलराम जी डांटते थे भगवान से, कुछ ऐसा मत करो, मिट्टी नहीं खाने का, यशोदा माई को बोल दूंगा मैं, वात्सल्य रस। पर माधुर्य रस में कैसा सेवा करे, जब गोपियों के साथ हो तो बड़े भाई आके खड़े हो जाते, तो क्या देखना मैं चाहता हूं मदद करूं, तो बोले अरे ऐसा समय में कैसे आ गए आप। तो माधुर्य रस में सेवा करने के लिए श्रीमती राधा रानी की छोटी बहन जो है अनंग मंजरी के रूप में बलराम जी मदद करते, क्योंकि मंजरियां छोटी लड़कियां होती हैं 7-8 साल की, तो वो अंतरंग लीला में भी प्रवेश कर सकती हैं जहां सखियां नहीं जा सकती, वहां मंजरियां जाती हैं। और तो अनंग मंजरी जो है श्रीमती राधा रानी की छोटी बहन, वो भी बलराम जी। तो इस तरह से हरेक रस में और हर तरीके से बलराम जी भगवान की लीला में सहायता करते हैं, लीला रस सहाय। और सबसे महत्वपूर्ण हम जैसे साधकों के लिए महत्वपूर्ण बात यह है बलराम जी की, बलराम जी को जानना, क्योंकि बलराम जी ही गुरु तत्व हैं, विष्णु तत्व यानी स्वांश भगवान के विस्तृत रूप जो अलग अलग अवतार हुए। फिर शक्ति तत्व भगवान की लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी, राधा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, एक ही है जो दो हो गए आदान प्रदान, आनंद का आदान प्रदान करने के लिए। और फिर जीव तत्व, जीव तत्व यानी भगवान के विभिन्न अंश, नगण्य तुच्छ जीव जो गुणात्मक रूप से भगवान के समान सच्चिदानंद है पर मात्रा में बहुत ही तुच्छ है, पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर निर्भर है। जिस तरह अग्नि के स्फुलिंग अपनी उष्णता और प्रकाश को रखने के लिए अग्नि के संपर्क में रहना जरूरी है, उसके संपर्क से छट जाएंगे तो वो ठंडे पड़ जाते हैं, इस तरह से जीव पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर आश्रित है। पर अनंत काल से बद्ध जीव जो है इस संसार में आ गया है, भगवान को भूलकर, भगवान के साथ जो संबंध है उसे छोड़कर यहां आ गया है, और उसे वापस जोड़ने का जो सेवा है वो बलराम जी करते हैं, और उन्हीं का अंश है गुरु तत्व। गुरु तत्व क्या है? जहां जीव भगवान श्री कृष्ण और जीव का जो मिलन स्थान है वो गुरु तत्व है। भगवान श्री कृष्ण जब जीव को आलिंगन करते हैं वो गुरु तत्व के द्वारा करते हैं। भगवान जब जीव को अपनी सेवा में लगाते हैं वो गुरु तत्व के द्वारा होता है, और गुरु तत्व के मूल हैं श्री बलराम जी। तो गुरु जो हैं इसीलिए बलराम जी के प्रतिनिधि माने जाते हैं। तो कहेंगे गुरु भगवान है फिर? हां और ना। हां कैसे? क्योंकि जब जीव शुद्ध अवस्था में भगवान की जो शक्ति को स्वीकार करता है और उसको प्रकट करता है, भगवान की जो भगवान का ज्ञान प्रस्तुत करता है, जिसके द्वारा जीव भगवान की सेवा में लगता है, भगवान का आश्रय लेता है, वो गुरु तत्व है। तो एक जीव बलराम जी की कृपा से इस गुरु तत्व को का एक माध्यम बन सकता है, और क्योंकि वो माध्यम है गुरु को साक्षात हरि बताई गई है। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रैर उक्तस तथा भाव्यत एव सद्भिः, ऐसा कहा भी जाता है शास्त्रों में, और सारे संत महात्मा गण ऐसा मानते हैं कि गुरु में और भगवान में कोई भी अंतर नहीं है। गुरु जो है भगवान का साक्षात स्वरूप है। पर अगर गुरु समझे कि मैं भगवान हूं तो वो गुरु गुरु नहीं है। तो फिर क्यों? क्योंकि गुरु अच्छी तरह से जानता है कि मैं, मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है, ये जो शक्ति है ये कृष्ण की ही शक्ति है, कृष्ण शक्ति बिना ना ही तार प्रवर्तन, मैं केवल एक माध्यम हूं। और इसीलिए शिष्य को चाहिए कि वो गुरु को साक्षात हरि के रूप में माने, सम्मान दे, सेवा करे और शरण जाए, और उनके द्वारा भगवान स्वीकार करते हैं। क्योंकि गुरु भगवान को प्रिय है, किंतु प्रभो यह प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, ये अचिंत्य भेदा भेद तत्व है। केवल जो भगवान की खास कृपा, बलराम जी की कृपा जिसको मिली है, केवल वो ये इस गुरु तत्व को समझ पाएगा कि कैसे गुरु भगवान भी हैं और भगवान नहीं है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे जब अंग्रेजों का राज्य यहां था भारत में, तो उस समय वो रानी जो थी वो इंग्लैंड में थी, पर उसका प्रतिनिधि था यहां वाइसरॉय, और उसको जो भी हम आदर देते हैं वो एक्चुअली वो रानी को दे रहे, बट उसके द्वारा, उस व्यक्ति के द्वारा। वो प्रतिनिधित्व कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है, पर वो रानी नहीं है, पर उसका रानी का प्रतिनिधि है वायसराय। इस तरह से तो ये समझना बड़ा मुश्किल है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने आप को इतना तुच्छ मानते हैं, कहते हैं जागाई मादाई होइते मुई से लघिष्ट, पुरी शेर कीट होइते मुई से, जगाई मादाई होइते मुई से पापिष्ट। बोलते हैं जगाई मादाई से भी मैं गया गुजरा हूं, और एक मल के अंदर जो कीड़ा है, विष्ठा के अंदर जो कीड़ा है, उस कीड़े से भी मैं गया गुजरा हूं, उतना मैं तुच्छ हूं। कोई अगर मेरा नाम लेगा तो उसके सारे पाप नष्ट, उसके पुण्य नष्ट हो जाएंगे, पर साथ साथ में चैतन्य चरितामृत लिखे और बोलते तुम लोग सुनो तुम्हारा जीवन उद्धार हो जाएगा। ऐसा साहस, इतना बड़ा ग्रंथ लिखने का, और कहता है कि मैं इतना पतित हूं। पतित हो तो फिर ऐसे इतने बड़े बड़े पुस्तक कैसे लिख रहे हो? यह समझना थोड़ा मुश्किल है। हां, मेरी कोई योग्यता नहीं है, पर वो महान, वो जैसे कोई बहुत अच्छा कलाकार हो, एक टूटे फूटे वाद्य कोई बाजा को भी वो बजाता है अच्छा, तो बाजा की महिमा नहीं है, बजाने वाले की महिमा है कि टूटे फूटे एक इंस्ट्रूमेंट जो है उसके अंदर से भी सुंदर राग निकाल सकता है। तो इस तरह से आचार्य जो हैं अपने आप को ऐसे तुच्छ मानते हैं, बोलते मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, ये केवल भगवान की कृपा है। क्योंकि वो अपने आप को इतने तुच्छ और नगण्य नम्र मानते हैं और शुद्ध हृदय में अपने आप को रखते हैं, इसीलिए ये जो भगवान का करंट है, गुरु तत्व का जो करंट है, उनके द्वारा मिल सकता है, प्राप्त हो सकता है। हालांकि उनका ये सोच है, पर सचमुच में वो ऐसे नहीं है, उनका व्यवहार भी उतना ही शुद्ध होता है, न केवल उनके वचन। वो तो कहते हैं मेरा नाम लेगा तू नरक में जाएगा, मेरा नाम मत ले, पर मैं जो कह रहा हूं वो सुन, मैं जो कह रहा हूं वो सही कह रहा हूं, क्योंकि मैंने जो सुना है वो दोहरा रहा हूं, ये मेरी महिमा नहीं है, कहने वाले की महिमा है। पर उस शब्दों की प्रभाव तभी होगा जिस हद तक उस व्यक्ति की शुद्धता हो, नम्रता हो, तभी उसका पूरा प्रभाव आएगा, नहीं तो उस हद तक नहीं आएगा। जब आप लोगों में से कितने लोग यहां थे नहीं मालूम, पांच छह साल पहले राधानाथ स्वामी महाराज यहां आए थे, जब ये जगह हम लोगों ने लिया था तो मालूम उधर पंडाल डाले थे और महाराज जी आए थे, और अनंत शेष का स्थापित करने के लिए भूमि पूजन करके मंदिर के लिए अनंत शेष जी को धारण करने की भू धारण शक्ति उनकी है ना, मंदिर का बोझा कौन उठाएगा, ई भी नहीं उठा सकती, बहुत मुश्किल है। कोई नहीं उठा सकता है, तो इसीलिए अनंत शेष को हम धारण, भगवान का भार जो है कौन उठाएगा, इसीलिए अनंत शेष को स्थापित करते हैं। उस समय उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी, बोले देखिए अनंत शेष की महिमा क्या है, भगवान सिखाते हैं तृणाद अपि सुनिचेन, एक घास के टुकड़े से भी ज्यादा नम्र, सचमुच में इतने नम्र हैं वो जमीन के अंदर जाके बैठ जाते हैं, घास तो जमीन के ऊपर रहता है, तो महाराज बोल रहे थे कि जमीन के अंदर चले जाते, इतने नम्र हैं वो, तृणाद अपि, तृण से भी ज्यादा नम्र। और उन्होंने कहा था, और सत्य निकला, उन्होंने कहा था कि इस प्रोग्राम के बाद दो दिन के अंदर आप भूल जाओगे कि अनंत देव बैठे हैं, पर वो नहीं भूलने वाले, वो पकड़ के रखेंगे, उनके ऊपर आप कीर्तन करोगे सब करोगे, दो दिन में आप भूल जाओगे। आज हमें से कितने लोग सोचते हैं ऐसा हो गया, दो हफ्ते के बाद ढूंढ रहे थे सब जगह खोदे, पता नहीं कौन सा जगह, क्योंकि वहां हमने सोचा कुछ सीमेंट वेमेंट का कुछ बनाएंगे, भूल गए कैसा भगवान की योग माया क्या थी, महामाया हमारी ओर से, पूरे तरह से भूल गए, खोदने का प्रयास किया कहीं समझ में ही नहीं आया। एक दो हफ्ते के अंदर। तो सब कुछ कर रहे हैं पर दिखते नहीं है, यह उनकी नम्रता है। सब कुछ उन्हीं के द्वारा हो रहा है, हमें ऐसा होना चाहिए। साधारणतः हम कुछ करते हैं तो चाहते हैं कि पूरी दुनिया देखे मैं हूं इधर, जो नहीं किया उसका भी यश लेना चाहते हैं हम लोग। पर गुरु तत्व साक्षात अनंत शेष सिखाते हैं। जमीन के नीचे जाके बैठ गए, पूरा पूरा बोझा वो उठा रहे हैं पर किसी को समझता नहीं। एक भक्त बता रहे थे हमको नमक जैसा होना चाहिए, नमक पानी में घुल जाता है या खाना में घुल जाता है पर नमक के बिना मजा नहीं आता। नमक है कोई पूछ देखता नहीं है नमक को, आस्वाद करता है उसका, आस्वादन करता है। तो ये भावना, मैं 2 साल पहले हम लोग घोसरवाड़ गए थे तो एक अच्छा मुझे अनुभव वहां हुआ। हम लोग जगन्नाथ रथ यात्रा, जगन्नाथ जी को पालकी में रख के, और एक व्यक्ति अपने सर पर गौरनिताई को लेके जा रहे थे, गौरनिताई को रख के चलते। तो एक अजीब चीज मैंने देखा, सारे रास्ते में जितने सारे माताएं बूढ़े जितने लोग बड़े बड़े हंडी में पानी लेके आते थे और जो व्यक्ति सर पे धारण किया ना गौरनिताई को उसके पैर धो रहे थे, उस व्यक्ति के पैर धो रहे थे। तो मैं सोच रहा था गुरु तत्व ऐसे कि उनके हृदय में भगवान को धारण किए हैं और इसीलिए वो भगवान की ओर से उसे स्वीकार कर रहे हैं उस सेवा को। पर समझ लीजिए वो आदमी जो सर के ऊपर गौरनिताई को रखा है वो सोचने लगे, सब प्रणाम कर रहे हैं, उस व्यक्ति को प्रणाम कर रहे थे और उसके चरण धो रहे थे। उसको लगने लगे कि मैं तो शायद महान हो गया हूं, 4 बजे तक मैं कुछ कोई देख भी नहीं रहा था मेरे को, हजारों में मैं कहीं एक था बीच में, अभी मैं लाखों में एक हो गया क्योंकि मेरे को लोग प्रणाम कर रहे हैं, मेरे चरण धो रहे हैं। अगर आप ऐसे समझ रहे हो सिर्फ गौरनिताय को किसी और के सर पर रखो फिर देखो। तो इस तरह से एक गुरु को पूर्ण रूप से मालूम है कि मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं, कभी भी उसके हृदय में ये भावना आती नहीं है उनकी शुद्धता के कारण, कि मैं जो कह रहा हूं सिंह जैसे गरज के बोलूंगा मैं कि पालन करो तो तुम्हारा जी उद्धार हो जाएगा, पर मैं अपने आप में पतित हूं, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं, मैं तुच्छ हूं, मैं नगण्य हूं, मैं हीन हूं, दीन हूं। ये समझना बहुत मुश्किल है। तो ये हुई बलराम जी का इंट्रोडक्शन, बलराम जी हैं कौन, न केवल भगवान के दूसरा स्वरूप हैं, न केवल भौतिक और आध्यात्मिक संसार की सृष्टि के द्वारा भगवान को मदद कर रहे हैं, न केवल वैयक्तिक रूप से भगवान की सारे लीलाओं में वैयक्तिक रूप से मदद कर रहे हैं सारे रसों में, बल्कि गुरु तत्व के द्वारा हर एक जीव का उद्धार के लिए योजना बनाकर अंतिम क्षण तक जब तक वो भगवत धाम न आ जाए तब तक उसको अलग अलग तरीके से आकर्षण करने का, सेवा में लगाने का, प्रोत्साहन देने का योजना बनाते रहते हैं। ये बलराम जी। अब उनकी महत्व हमारे जीवन में क्या है, हम जैसे साधकों के लिए हमें समझ लेना चाहिए। बिना बलराम जी की कृपा से कृष्ण की कृपा कभी नहीं मिल सकती हमें, कृष्ण का ज्ञान हमें नहीं मिल सकता जब तक बलराम जी की कृपा नहीं हो। हेनो निताय बिने भाय राधा कृष्ण पायते नाय, दृढ़ करी धोरो निताय पाए। अनुत्तम दास ठाकुर कहते हैं हेनो निताय बिने भाय नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना गौरांग महाप्रभु की कृपा आपको नहीं मिलेगी, बलराम जी की कृपा के बिना कृष्ण की कृपा आपको नहीं मिलेगी। दृढ़ करी धरो निताय पाय, दृढ़ता पूर्वक बलराम जी के चरण कमल को आप पकड़ लो। रघुनाथ दास गोस्वामी करोड़पति के बेटे थे, इकलौते बेटे, बड़े बड़े जमींदार उस समय के, पर रघुनाथ दास गोस्वामी को जब हरिदास ठाकुर की कृपा से और दूसरे लोगों के बारे में, दूसरों के द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेश प्राप्त हुआ, कृपा प्राप्त हुई, तो वो पागल जैसे हो गए। नहीं, मुझे जाके चैतन्य महाप्रभु की सेवा करना है, ये सब चीज को छोड़ के मुझे चले जाना है। दस दस सिपाहियों को रखे थे उनके माता पिता, जहां भी भागते थे पकड़ के लाते थे। बहुत प्रयास किया, कुछ नहीं हुआ। उनकी शादी करवा दी, एकदम सुंदर स्त्री, अप्सरा जैसी, फिर भी वो भाग जाते थे। मां बोली, अरे फिर क्या करेंगे इसको, नारियल के रस्सी से बांध दो इसको पकड़ के। तो पिताजी बोले, अरे जिसको अप्सरा जैसी सुंदर स्त्री बांध नहीं सकती, करोड़ों करोड़ों रुपए का पैसा नहीं बांध सकता, ये नारियल का रस्सी क्या बांधेगा इसको। पर फिर भी ऐसा सिपाही रखे थे, निकल नहीं सकते थे। कब तक? जब तक पानी हाटी चिड़ा दही महोत्सव में नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं मिली। जब उनको नित्यानंद प्रभु की कृपा मिली, दोनों चरण कमल उसके सर पर रखे, तब तुरंत उसके कुछ ही दिन बाद रघुनाथ दास गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण को प्राप्त कर पाए। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य अप्रसादात नगति कुतोपि। बलराम जी के प्रतिनिधि हैं गुरु, सदगुरु की कृपा से हमको भगवान, भगवान की कृपा से गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से हमको भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। न केवल भगवान को जानने और भगवान की कृपा के लिए बलराम जी की जरूरत है, पर कृष्ण का गुणगान करने के लिए भी बलराम जी की कृपा चाहिए। कृष्ण शक्ति बिना उनकी, हम कहते हैं ना, मूकं करोति वाचालम् पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे श्री गुरुम दीनतारिणम। वो बलराम जी की कृपा है जो गुरु के द्वारा मिलती है, उनके बिना हम बोल ही नहीं सकते हैं। वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में कहते हैं, सहस्र बदन वंदो प्रभु बलराम जहार सहस्त्र मुखे कृष्ण यशोधाम। सबसे पहले मैं सहस्र बदन वंदू, मैं अनंत शेष जिनके सहस्र बदन हैं, मुख हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूं प्रभु बलराम। यहार सहस्र मुखे कृष्ण यशोधाम, जिनके हजारों मुखों से, मुख जो हैं वो कृष्ण के यश के धाम हैं, यानी निवास स्थान है। कृष्ण का यश सुनना है तो बलराम जी के मुख, अनंत मुख, अनंत शेष के अनंत मुखों से, अनंत काल से भगवान श्री कृष्ण के अनंत गुण का गुणगान हो रहा है, पर अभी तक समाप्त नहीं हुआ। महारत्न थुइये न महाप्रिय स्थाने यशोरत्न भंडार श्री अनंत वदने। महारत्न थुई, थुई मतलब रखना, महारत्न जो भगवान के गुणगान का जो महारत्न है। अब अगर आपके पास हीरा है तो कहां रखेंगे? खिड़की के ऊपर रखेंगे कि दरवाजा के पास सुखाने के लिए धूप में? नहीं, उसको एक अच्छे जगह में, सुरक्षित जगह में रखते हैं, एक बहुत सुरक्षित अच्छे जगह पे। इस तरह से महारत्न थुई ये न महाप्रिय स्थाने, भगवान ने, भगवान का जो यश जैसा रत्न है उसको सही जगह पे रखा है। कहां? अनंत शेष के मुख में रखा है। यशो रत्न भंडार और श्री अनंत वदने, श्री अनंत का जो वदन है, उनके जिह्वा जो है, यशो रत्न भंडार है, भगवान के यश गुणगान का भंडार है। अतएव आगे बोलो रामे रस्तवन कोरिले से मुखे स्पुरे चैतन्य कीर्तन। इसीलिए अतएव आगे बलरामे रस्तवन, इससे पहले, मैं शुरू करने से पहले बलराम जी का गुणगान करना चाहता हूं, क्योंकि करिले से मुखे स्पुरे, जिस मुख से मैं बलराम जी का अगर गुणगान करूंगा तो उस मुख से चैतन्य महाप्रभु का गुणगान अपने आप स्फुरित होगा। इसीलिए जब भी हम कृष्ण कथा करते हैं, परंपरावश आए हुए भक्त जो हैं हमेशा गुरु वंदना करते हैं, फिर पंचतत्व की वंदना करते हैं, तत्पश्चात फिर हरिकथा शुरू करते हैं, क्योंकि उनकी कृपा के बिना, उनकी आशीर्वाद के बिना, उनकी शक्ति संचार के बिना हम कुछ नहीं कह सकते। आज हमें चैतन्य महाप्रभु के बारे में जो भी मालूम है किसकी कृपा से? केवल बलराम जी की कृपा से, नित्यानंद प्रभु की कृपा से। कृष्णदास कविराज गोस्वामी को स्फूर्ति कौन दी? बलराम जी ने, उनके सपने में आए 93 साल के, बोले जाओ तुम वृंदावन और वहां तुम्हारे जीवन सफल हो जाएगी। वहां आए, रघुनाथ दास गोस्वामी से श्रवण किए, तत्पश्चात उन्होंने, वो बोल रहे हैं कि मैं इतना बूढ़ा हूं, मेरे का आंख दिखता नहीं, हाथ पैर हिल रहा है, मेरा बुद्धि में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं कैसा कलम चल रहा है, ये केवल नित्यानंद प्रभु की कृपा है कि मैं ऐसे ग्रंथ को लिख रहा हूं, नहीं तो मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं मैं जो कुछ भी लिख रहा हूं इस, ये केवल बलराम जी की कृपा है, केवल नित्यानंद प्रभु की कृपा है, नहीं तो मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी भी, श्रील प्रभुपाद जब जलदूत में जा रहे थे, उनका वो प्रार्थना देखिए, जलदूत का जो दो प्रार्थना उन्होंने लिखा है, मार्किने भागवत धर्म और दूसरा, वहां कहते हैं भक्ति नाही वेद नाही नामे खूब दारो, भक्ति वेदांत नाम एवे सार्थक करो, बड़ो कृपा कोइले कृष्ण अध मेरो प्रति, श्री सिद्धांत सरस्वती सचिसुत प्रिय अति कृष्ण भक्ति दे थाय थाय, ये मेरे गुरु की आज्ञा है, उसके आधार पर मैं जा रहा हूं। नाचाओ प्रभु नाचाओ से माते, मेरे को नचाओ प्रभु आप जैसे चाहते हो, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं, न भक्ति है न वेदांत है, नाम तो बड़ा दे दिया भक्ति वेदांत, अब आप साबित करो। और फिर कैसी रचना की, ऐसे लोग जिनको कुछ भी नहीं मालूम, कृष्ण नाम क्या नहीं मालूम, वैदिक संस्कृति क्या है नहीं मालूम, पैदा होते ही मांसाहार नशा व्यभिचार जुआ, ऐसे लोगों को परिवर्तन कौन कर सकता है? जब तक बलराम जी की कृपा नहीं हो, सदगुरु की कृपा नहीं हो, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। ये नित्यानंद प्रभु ने जीव गोस्वामी को जब मायापुर के दर्शन, गौड़मंडल के दर्शन कर रहे थे, उस समय बताए थे अद्भुत मंदिर यहां प्रकाशित होगा और यहां से चैतन्य महाप्रभु का सेवा पूरे विश्व भर में विकास होगा। 400 साल पहले बोल के गए थे कि यह शक्ति संचारित होगी और एक सेनापति व्यक्ति आएगा, और जब वो आए, श्री चैतन्य महाप्रभु भी नरोत्तम नरोत्तम पैदा भी नहीं हुए थे, नरोत्तम दास ठाकुर उस नदी के पास जाकर वहां नरोत्तम नरोत्तम, कौन नरोत्तम? तुरंत नित्यानंद प्रभु समझ गए बहुत बड़ा यहां भक्त आने वाला है नरोत्तम दास ठाकुर, और वो फिर से क्रांति मचाएगा चैतन्य महाप्रभु की लीला प्रचार करने में। तो इस तरह से अगर क्यों बलराम की, बलराम जी की हमारे जीवन में महत्व क्या है? सब कुछ वही है। जब तक बलराम जी की, नित्यानंद प्रभु की, सदगुरु की कृपा, उनके प्रतिनिधियों की कृपा नहीं मिलेगी, तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा। कृष्ण को जान नहीं पाएंगे, कृष्ण का गुणगान नहीं कर पाएंगे, कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो फिर इस कृपा से हम क्यों वंचित हैं अभी तक? क्या हमें रोक रहा है इस कृपा प्राप्त करने के लिए? क्या हमें रोक रहा है? क्या बाधा है? कौन सा दीवाल हमने बना खड़ा कर रखा है जिसके द्वारा वो कृपा बह नहीं रही है? वो बलराम जी की लीला में, कृष्ण लीला के दौरान ये बात वहां साफ साफ बताया गया है, किसको बलराम जी की कृपा मिल सकती है और किसको नहीं मिल सकती है। उस व्यक्ति को नहीं मिलेगी जो भक्तों को नीच दिखाना प्रयास करता है और भक्तों का अपमान करता है। बलराम जी की शुरुआत लेके सदगुरु से लेकर उनके प्रतिनिधियों तक, उदाहरण कृष्ण लीला में ही है। भगवान श्री कृष्ण जब प्रभु रामचंद्र के रूप में त्रेता युग में अवतरित हुए तो उनके भाई थे लक्ष्मण, किष्किंधा क्षेत्र में भ्रमण करते करते सुग्रीव से मिले जो वानरों का राजा था, और उस राजा के मंत्रियों में से एक थे द्विविध, हनुमान जी, अंगद, महिंद, नील, नल, बड़े महारथी, और उनमें से एक थे द्विविध, बहुत ही शक्तिशाली, 10,000 हाथी के बल एक एक भुजा में थी उनकी। जब प्रभु रामचंद्र की सेना समुद्र पर जो क्या बोलते हैं ब्रिज सेतु बंधन के समय में और रावण के साथ युद्ध करने में द्विविध का बहुत बड़ा हाथ था, उस भुजाओं से उसने बड़े बड़े पत्थर की चोटियों को, पहाड़ों की चोटियों को उठाकर हनुमान जी की तरह वो भी सेतु बंधन में भाग लिया था। अपने हाथों से रावण की सेना के कई लोगों को उसने वध की थी। राम का शुद्ध भक्त था वो, राम को पूर्ण राम के प्रति निष्ठा थी, पर जितना राम के प्रति निष्ठा थी लक्ष्मण जी के प्रति उसकी सम्मान या निष्ठा नहीं थी, लक्ष्मण जी को नहीं मानता था। इस अपराध के कारण दुस्संग में पड़ गया, भौमासुर के साथ उसका संग हो गया। भौमासुर बहुत शक्तिशाली, जिसने कई सारे राजाओं को हराकर अपनी शक्ति से उनके सारे राजकुमारियों को लेकर 16,000 रानियों को रखा हुआ था समुद्र के बीच में अपने राज्य में, और उसका एकदम निकटतम मित्र था द्विविध। और जब वही भगवान प्रभु रामचंद्र और लक्ष्मण कृष्ण और बलराम के रूप में द्वारका में अवतरित हुए, द्वारका में आए, और भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर का वध किया, वही द्विविध इतना क्रोधित हो गया, क्योंकि बलराम लक्ष्मण जी के प्रति उसको विश्वास नहीं था, धीरे धीरे राम के प्रति कृष्ण के प्रति भी उसका विश्वास चला गया, असुर बन गया वही द्विविध, दूसरे जन्म में नहीं उसी जन्म में। कहां प्रभु रामचंद्र की निष्ठापूर्वक सेवा, और कहां आज कृष्ण बलराम को मारने की इच्छा, न केवल कृष्ण बलराम को बल्कि सारे द्वारकावासियों को और आसपास के जितने लोग हैं जनसाधारण सबको, सबके हृदय में तहलका मचाना, सबके जीवन में तहलका मचाना। तो जब उसे पता चला कि भौमासुर मारा गया, मेरा प्रिय मित्र मारा गया है, तो उसने बदला लेने हेतु द्वारका के आसपास आता था और हमेशा गांव में आग लगा देता था, लोगों को जला रख देता, बड़े बड़े जो खेतों में जाके जला के रख देता था ताकि अकाल पड़ जाए। ब्राह्मणों के यज्ञ में जाता था और वहां मलमूत्र विसर्जन करके गंदे करके आ जाता था, वहां सब ध्वंस करके आ जाता था। बड़े बड़े वैश्यों के घर जाता था और वहां के लोगों को उठा लेता था और पुरुषों को लेकर, सारे पुरुषों को बड़े एक पहाड़ के गुफा में डालकर बड़ा पत्थर लगा देता था और स्त्रियों का मान भंग करता था, बलात्कार। और कभी कभी समुद्र में जाकर हाथ हिलाता था, इतना जोर हिलाता था ऐसे, बस आप जाके रंकाला में हाथ हिलाओ क्या होगा, ज्यादा ज्यादा आपको सर्दी होगा, ज्यादा हिलाते रहोगे किसी को तकलीफ नहीं दे पाओगे, ज्यादा ज्यादा किसी के मुंह पे छिड़कोगे तो एक थप्पड़ मारेगा आपको। पर जब द्विविध जाता था उस समुद्र के पास और हाथों से हिलाता था, उसके हाथों में बाहुबल इतना था कि टाइडल वेव बाढ़ आ जाते थे, पूरे पूरे शहर के शहर, गांव के गांव डूब जाते थे। इस तरह से तहलका मचा के रखा था। एक दिन जब रैवतक पर्वत के पास वो खड़ा था, उसे एकदम बहुत सुंदर वाद्य और गाना बजाना सुनाई दिया। ये कहां से आ रहा है आवाज, छलांग मारते हुए भाग गया। वहां देखा कृष्ण और बलराम बहुत ही सुंदर देखने में, सज धज कर एकदम, गोपियों के साथ जो बहुत सारे से सदे हुए थे, बहुत ही सुंदर लग रहे थे उनके साथ। वो बलराम जी वारुणी पी रहे हैं और सारे गोपियों के साथ पूर्ण रूप से एकदम मदोन्नत। ये मदोन्नत ये दारू पीने के बाद जो होता है वैसा नहीं, ये दिव्य आनंद का, ये जो वारुणी है ये अलग प्रकार का ये पेय है। तो बहुत ही सुंदर लीला चल रहा था। बलराम जी को देखकर ये आकर्षित हो गया, पर जो उसने देखा कि ओ इतनी सुंदर स्त्रियों के साथ बलराम जी और कृष्ण भगवान सुंदर लीला कर रहे हैं, तो इतनी ईर्ष्या के साथ वो छलांग मारकर गया और आसपास के पेड़ वेड़ तोड़कर एक अजीब आवाज किला किला ऐसे आवाज करने लगा और उन स्त्रियों के सामने चलाकर ऐसे खड़ा हो गया और भ्रुकुटी ऐसा हिलाकर अजीब अजीब तरीके से मुंह हिलाने लगा। तो गोपियां देखकर हंसने लगी। प्रभुपाद जी लिखते हैं लड़कियों का स्वभाव है कुछ देखेंगे करके हंसने लगते हैं आपस में। कुछ भी हुआ तो उनको लगा हंसी मजाक हो रहा है, ये देखो बंदर कैसा कैसा मुंह कर रहा है। पर उन्हें नहीं मालूम था, नादान लड़कियां थी, उन्हें नहीं मालूम था कि ये बड़े धूर्त तरीके से और बड़े हिंसात्मक भावना से इस तरह से व्यवहार कर रहा है। बाद में इन्होंने देखा अपने शरीर के निचले भाग का सब प्रदर्शन करने लगा और क्रोध में आकर उनके भी वस्त्र खींचने लगा। बलराम जी देख रहे थे, पर सबसे बड़ा सबसे ज्यादा उनको गुस्सा आया जब सीधा आया बलराम जी के पास और उनके हाथ से वारुणी उठा के ले गया, पी लिया। बलराम जी बोले अभी तो फिर मुझे उतरना पड़ेगा अभी। तो बलराम जी ने कहा ठीक है, एक बड़ा पत्थर लिए और जोर से मारे द्विविध की ओर। द्विविध ने डॉज थोड़ा अभ्यास था शायद उसको पहले से, क्योंकि वो रामचंद्र के समय भी पत्थर फेंका होता था, झुक गया वो। फिर उसने एक बहुत समझ में आ गया कि वो बलराम अभी लड़ना चाहता है मेरे से, तो तुरंत उसने एक बहुत बड़ा पेड़ उखाड़ दिया जमीन से बड़े आसानी से और एक हाथ से उसने सारे डाल को तोड़ के एकदम फर्स्ट क्लास लकड़ी बनाई और सीधा आकर बलराम जी के सीधे सर के ऊपर प्रहार किया उसने। बलराम जी न हिले न डुले, एक सेंटीमीटर ने एक मिलीमीटर भी हिले नहीं, स्थिर खड़े थे। इतना शक्तिशाली गोरिल्ला इतना बड़ा पेड़ लेकर पूरी शक्ति के साथ पटक रहा है और बलराम जी हिले भी नहीं इतना थोड़ा भी। ये बलराम जी की शक्ति है और जिसको बलराम जी की कृपा मिल जाए, ऐसे माया बड़े बड़े हथौड़ी भी लेकर आए तो भक्त स्थिरता पूर्वक अपनी भक्ति में रह सकता है बिना कोई असर के, केवल बलराम जी की कृपा से। बलराम बलभद्र, हाँ पढ़े हमने तात्पर्य में, प्रभुपाद जी लिखते हैं अपना बल प्रदर्शन करने में आनंद लेते हैं बलराम जी। बोले ओ ऐसा ऐसी बात है। फिर वो जब पेड़ लेके आया तो बलराम जी ने अपने गदा से टुकड़े टुकड़े कर दिए उस पेड़ के, तो उसने दूसरा पेड़ निकाला, तीसरा पेड़ निकाला, पेड़ ऐसे उखाड़ने लगा वो, उखाड़ते उखाड़ते बाद में दूर दूर तक आंखें जितनी दूर जाए एक पेड़ नहीं वहां, तो फिर पत्थर उठा के फेंकने लगा। अंत में ऐसी स्थिति आई एक पत्थर भी नहीं, बलराम जी ने टुकड़े टुकड़े करके पाउडर कर दिया उधर। म्युनिसिपैलिटी वाले होते तो बहुत खुश होते, पेड़ नहीं पत्थर नहीं सब कुछ टुकड़े हो गए। फिर बलराम जी बोले हो गया बहुत, अभी अभी इसको समाप्त करना है। तो उस मुट्ठी लेकर आया मारने के लिए, क्योंकि पत्थर नहीं है, पेड़ नहीं है, क्या करे, मुट्ठी लेके मारने आया। बलराम जी ने कहा मैं एक क्षत्रिय हूं, रूल का पालन करना चाहिए, गदा फेंक दिए और एक मुट्ठी बनाकर कंधे के ऊपर एक प्रहार किए, बस एक ही मुट्ठी। मलमूत्र विसर्जन एक साथ साइमल्टेनियसली, इंस्टॉलमेंट में नहीं, एक साथ विसर्जन करते हुए उसके सर से सब जगह से नवद्वार से खून निकलते हुए तुरंत धराशय हो गया। बोलो कृष्ण बलराम की न केवल बलराम जी पर बलराम के प्रतिनिधि जो हैं उनके प्रति भी अगर अनादर भाव हो, उनके प्रति भी अगर उनको कम दिखाने का प्रयास हो किसी व्यक्ति में, उस व्यक्ति के भी भक्तिमय जीवन का सर्वनाश हो जाता है। इसका सबूत खुद कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, खुद लिखते हैं, बोले मैं क्यों किस लिए लिख रहा हूं, क्योंकि मैं बताना चाहता हूं बलराम जी की कृपा क्या है मुझ पर, नित्यानंद की कृपा क्या है। मेरे घर में दिन रात संकीर्तन चलता था, झमटपुर नाम का एक जगह है, वहां कृष्णदास कविराज गोस्वामी रहा करते थे अपने बड़े भाई के साथ। एक दिन नित्यानंद के प्रतिनिधि उनके पार्षद मीनकेतन रामदास, जिनको निमंत्रण दिया गया था, वो वहां आए आए पर उनका एक अजीब स्वभाव था, पूर्ण रूप से कृष्ण प्रेम में मदोन्नत रहते थे वो, नित्यानंद प्रभु के समान, और इसीलिए उनका व्यवहार बड़ा अजीब हुआ करता था। हमेशा उनकी आंखों से आंसू, सारे अष्ट सात्विक विकार प्रदर्शन होते रहते थे। वो आए और घर के आंगन में आकर बैठे, प्रांगण में आकर बैठे, जितने लोग घर में थे सबके सब झुक के प्रणाम किए, ये जानते हुए कि ये नित्यानंद प्रभु के प्रतिनिधि हैं। केवल एक व्यक्ति ने झुका भी नहीं, न प्रणाम किया, और वो था गुणार्णव मिश्रा, जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी के बड़े भाई का पुजारी था, चैतन्य महाप्रभु की पूजा कर रहा था, वो आरती कर रहा था, और नित्यानंद प्रभु के प्रतिनिधि आए, उसने उनको मुड़ के भी, उनके ओर मुड़ के भी देखा नहीं, प्रणाम करना तो दूर की बात। तुरंत मीनकेतन रामदास गुणार्णव मिश्रा की ओर देखकर ठहाका मारकर हंसने लगे और कहने लगे, ये देखो दूसरा रोमहर्षण सूत, और ये कहकर फिर वो दूसरों के साथ कीर्तन करने लगे, बातचीत करने लगे, और कुछ देर कथा हुई, तत्पश्चात वो जाने लगे। गुणार्णव मिश्रा ने परवाह भी नहीं की, पर जाते वक्त मीनकेतन रामदास का अजीब स्वभाव था, कोई उनको प्रणाम करता था तो कभी कभी उनके कंधे के ऊपर चढ़ के बैठ जाते थे, कभी कभी अपने जो मुरली था उनके पास किसी से मार देते सर के ऊपर, कभी कभी किसी को प्रेम से तमाचा मार देते प्रणाम करते हुए। तो जाते वक्त कृष्णदास कविराज गोस्वामी के बड़े भाई के साथ थोड़ा वाद विवाद हो गया मीनकेतन रामदास का, और मीनकेतन रामदास तुरंत समझ गए कि चैतन्य महाप्रभु के प्रति पूर्ण रूप से इन दोनों को विश्वास है, पर नित्यानंद प्रभु के प्रति उतना विश्वास नहीं है, एक अपराधी भाव है ये। तो जब वाद विवाद हो गया, कृष्णदास कविराज गोस्वामी वहां आए और अपने भाई को कहने लगे, ये क्या कर रहे हो तुम, ये अर्ध कुक्कुट न्याय है, तुम एक को मानते हो और दूसरे को नहीं मानते, महाप्रभु को मानते हो और नित्यानंद को नहीं मानते, नास्तिक होना अच्छा है ये दांभिकता से कि एक को मान रहे हो और दूसरे के प्रति अपराध कर रहे हो, इससे तो नास्तिक होना अच्छा है और दोनों के प्रति मान, दोनों को मानो नहीं तो भी चलेगा। इस तरह से बड़े कठोर शब्द में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने मीनकेतन रामदास का पक्ष लेकर अपने भाई को बड़े कटु शब्द में बोले। मीनकेतन रामदास क्रोधित होकर अपने मुरली को तोड़कर वहां से चले गए। उसी क्षण कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं उसी क्षण मेरे बड़े भाई का पतन हो गया और उसके थोड़े ही दिन नित्यानंद प्रभु उनका ये दो चीज वो कहते हैं, बोले नित्यानंद प्रभु के सेवकों का ये प्रभाव देखो और नित्यानंद प्रभु का दया का स्वभाव देखो, क्योंकि मैंने नित्यानंद प्रभु के पक्ष में होकर मैंने उनके पक्ष ली, नित्यानंद प्रभु इतने प्रसन्न हुए कि कुछ ही दिनों के बाद मेरे सपने में आए और उन्होंने मुझे कहा कि तुम वृंदावन जाओ और तुम्हारा सर्व सब कुछ सफल हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा और उन्हीं की कृपा से मैं यहां आया और जब मैं को भी जो भी कर रहा हूं उन्हीं की कृपा से कर रहा हूं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब नित्यानंद प्रभु या मां बलराम जी के प्रतिनिधि, गुरु गुरु के प्रतिनिधि इत्यादि जो भक्त हैं, अगर हम एक को मानते भगवान को मानते हैं पर भक्तों के प्रति निंदा करते हैं, ये ऐसा स्वभाव होता है, तो फिर हम प्रगति नहीं कर सकते। निश्चित रूप से बलराम जी होते तो शायद प्रहार करके हमारा पतन हो गया होता, नित्यानंद प्रभु हैं इसीलिए थोड़ी बहुत चल रहा है, नहीं तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और ये स्वभाव कैसे आ जाती है, हवा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे एक कथा, नेंगटा पाचो, नेंगटा नेंगटा मतलब नंगा, पाचो पाचो मतलब नाम, कोई नाम हो तो उसको छोटा करके बोलते ना, गोटिया कोटिया बोलते कुछ ऐसा नाम, कुछ नाम निक नेम, तो पाचो उसका नाम था पंचानन। एक गांव में एक लड़का था नंगा घूमता था, अभी 3 साल का लड़का और क्या करेगा, नंगा घूमता था, मलमूत्र वहीं विसर्जन कर देता जहां भी खड़ा, नाम था उसका पंचानन। बड़ा हुआ, गांव से 10वीं पास किया, कॉलेज नहीं था, शहर में चला गया, बीए पास हुआ डिस्टिंक्शन में, तो वहां के लोग कुछ आए और गांव में बोले लोगों को, बोले बात में अपना पाचो, बीए ग्रेजुएट हो गया डिस्टिंक्शन आया, तो लोग बोले वो पाचो ना, नंगा घूमता था वो, मलमूत्र विसर्जन करता था, मालूम है क्या बीए, उसको ग्रेस मार्क देके बढ़ाया होगा, कुछ नहीं। थोड़े दिन के बाद लोग आए, अरे अरे एडवोकेट पाचो हो गया वो पंचानन, एडवोकेट हो गया बहुत बड़ा एडवोकेट, एडवोकेट अरे पगार नहीं मिलता होगा, किसी ने ऐसे बहाना करा है, ओए ना मलमूत्र विसर्जन करता था, नंगा घूमता था, अरे बिना चड्डी के घूमता था, मैं देखा हूं उसको। फिर किसी आए वो बोले अभी तो मैजिस्ट्रेट बन गया, मैजिस्ट्रेट कोई आता ही नहीं होगा उसके पास, वही नंगटा पाचो ना, नंगा घूमता था मलमूत्र विसर्जन करता था। अरे मलमूत्र एक बार विसर्जन करता था, अभी नहीं कर रहा वो, अभी बहुत प्रगति हो गई उसकी, बहुत बढ़ गया है, और तुम वही कह रहे हो नहीं 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 वो नंगा घूमता था मलमूत्र विसर्जन करता था। अब सवाल उठता है कि नेंगटा पाचो मलमूत्र विसर्जन कर रहा है कि तुम कर रहे हो, वो तो प्रगति बोल के चला गया, अग्रसर हो रहा है और तुम भी अभी नंगा और मलमूत्र विसर्जन करते इधर ही बैठे हुए। तो भक्तिदान सरस्वती ठाकुर कहते हैं कभी कभी हृदय में ईर्ष्या या हमारे अंदर कुछ गुण नहीं है, दूसरे के अंदर वो गुण देखा या हमको कुछ गुण अच्छा नहीं लगता हमारे अंदर और वही गुण दूसरे में देखते हैं, तो स्वाभाविक रूप से कभी ऐसा होता है कि एक व्यक्ति को हम एक उसके सर के ऊपर एक लेबल चिपका के हमारे हृदय के कपाट के अंदर घुसा के रख देते हैं, ये व्यक्ति ऐसा ही है, 50 साल के बाद भी वैसा ही है, बिना कपड़े का ही घूम रहा है, अभी भी वो मलमूत्र विसर्जन कर रहा है। इसका मतलब भक्ति की शक्ति को हम कम समझ रहे हैं। अब वो कर भी रहा है तो वो भगवान जाने, अब आप क्यों सोचते हो, वो जो करना है करने दो, क्यों हम फंस जाए। जब तक ये भावना रहेगी हमारे हृदय में, निर्मत शरणाम सताम, भागवत एक ऐसा कवच बन जाएगा हमारे हृदय में, आवरण, तदश्मसारम हृदयम बतेदम, भेद नहीं कर पाएगा भागवत हमारे हृदय में, भेद नहीं कर पाएगा। इदम तुते गुह्य समम प्रवक्षामि अनुसूयवे, ये ज्ञान गुह्य रहेगा, भले हमने हजारों बार सुना हो, लाखों बार सुनाया हो, पर हृदय को स्पर्श नहीं करेगा, हृदय परिवर्तन नहीं होगा। जब तक भगवान, सद्गुरु और उनको मानने वाले भक्त, अब वो जैसा भी वो हो जाने भगवान जाने, हम कौन होते हैं एक लेबल लगा के उनको एक जगह पे ठूस कर हमेशा सोचना कि वैसे ही वैसे ही वैसे ही, वो है तो है, पर अगर हम ऐसे लेबल लगा देंगे हमारे लिए वो एक क्या बोलते हैं एंकर, लंगर बन जाएगा। भक्तिदान सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं ना, भक्तिदान ठाकुर वो मैरिज पार्टी का देते हैं कि इस जगह से वो जगह जा रहे थे पर लंगर नहीं निकाला उन्होंने, लंगर नहीं निकालने के कारण जो नाविक था वो नाव चला रहा है पर बहुत घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है बस, क्योंकि लंगर ही नहीं निकाला। इस तरह से माला घूम रहा है, जपा हो रहा है पर लंगर नहीं निकाला। आसक्ति, हमारी भावना, मेरा मत सही है, मैं जो समझता हूं ये व्यक्ति ऐसा ही है, ये दुनिया ऐसे ही है, ये लोग ऐसे ही है, ये जो लंगर है, ये लंगर जब तक हम नहीं निकालेंगे, दूसरे लोग प्रगति होके भगवत धाम जाएंगे, हम यही मलमूत्र विसर्जन करते हुए नंगे घूमते रहेंगे, क्योंकि बलराम जी की कृपा नहीं मिलेगी। और धीरे धीरे गुरु के प्रति अपराध करने लगेंगे, धीरे धीरे भगवान के प्रति विश्वास भी चला जाएगा। जैसे रामचंद्रपुरी का हुआ, हमेशा वैष्णवों की निंदा, बाद में गुरु की निंदा, और अंत में जगन्नाथपुरी में आकर महाप्रभु की निंदा। अगर वही देखने की इच्छा है तो भगवान दिखाएंगे, ये यथा माम प्रपद, जैसा तुम जो चाहते हो वो दिखेगा तुमको। अरे शिशुपाल को भगवान में 100 दोष दिखे, बोनाफाइड दोष, हा ऐसा नहीं कि नहीं 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 बघितला, मैं प्रूफ दे तो तुम्हारा, प्रूफ दिया उसने, देखने में देखो काला कौवे जैसा है, हाय काले हैं कृष्ण, झूठ बोला क्या मैं नहीं। शिशुपाल, आप महाभारत में पढ़ेंगे, शिशुपाल का 100 आरोप जो था 100% सही था, माता सरस्वती उसके मुंह से बोल रही थी, सही व्यक्तियों को गुणगान समझ में आ रहा था, दूसरे लोगों को समझ में आ रहा था ये क्या है। तो इस तरीके से सिंहिका की बीमारी है, रामायण में वर्णन आता है, जब हनुमान जी लंका की ओर जा रहे थे तो एकाएक अटक गए हवा में, उड़ नहीं पा रहे, बोले ये क्या हो गया, हाथ पैर हिला रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे। फिर देखा कि सिंहिका नाम की एक राक्षसी उनकी परछाई को पकड़ ली, और परछाई से उसके पास एक कला था, वो परछाई को पकड़ के उस व्यक्ति को नीचे लाती थी, और बोली ब्रह्मा जी का वरदान है, तुझको मैं निगल जाऊंगी। तो हनुमान जी बोले ठीक है, बड़े हुए बड़े हुए बड़े हुए, ये भी बड़ी हुई, खोली 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 मुंह खोली, और अंत में हनुमान जी अंदर चले गए उसके मुंह के अंदर, अंदर जाके उसके हृदय को फाड़ दिया और निकले बाहर, उसके शरीर को फाड़ कर निकले। तो आचार्य इसके तात्पर्य में कहते हैं, हमारे अंदर ये जब तक सिंहिका की प्रवृत्ति होगी, एक साधक के परछाई को देखना, कौन ऐसा व्यक्ति है जो शुद्ध है, शुद्ध होता तो यहां आते क्यों हम लोग, किसके अंदर दोष नहीं है, केवल भगवान और शायद उनके शुद्ध भक्तों के अलावा, और उनमें भी चाहे तो हमको दोष दिखेगा, आप चाहे तो दिखेगा, दिखाएंगे भगवान अनंत दोष दिखाएंगे, पर उसको लेकर वो कुछ भी हो, पर एक समय में नंगा चलता था वो मालूम है, वो नंगा चलने वाला, वो मलमूत्र विसर्जन करने वाला, उसी को पकड़ के उस व्यक्ति को खींचो खींचो, निगल जाना चाहो, कैसे प्रगति करेंगे हम? जब तक उसे नहीं निकालेंगे, ये उल्टी करना पड़ेगा हमें। सारी गंदगी जब आती है तो उसको क्या बोलते हैं, आयुर्वेद में दो प्रकार के होता है, नीचे से या ऊपर से, कैसे तू निकालते हैं उसको, या उल्टी से या वामन क्रिया। बड़ा सुंदर नाम है, नाम कम से कम सुंदर है। वामन देव ने ऐसे किया, बलि महाराज का शुद्धिकरण किया अंदर बाहर। तो ये प्रवृत्ति हमारे अंदर भी है, और जब तक ये प्रवृत्ति हम अपने हृदय से नहीं निकालेंगे, 100% आप सही होगे, आप सही होगे, आप जो कह रहे हैं वो सही है, वो अभी भी शायद नंगा चलता हो, शायद मलमूत्र विसर्जन करता हो रास्ते के बगल में, पर हमारा अग्रसर होना क्यों हम रोके, वो जाने और भगवान जाने। तो इस तरह से ये बहुत महत्वपूर्ण चीज कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का भक्त थे उनके बड़े भाई, ये डिवोटी थे, 100% चैतन्य महाप्रभु में विश्वास था, पर नित्यानंद प्रभु पे विश्वास नहीं था। तो इस तरह से भगवान पे विश्वास है, गुरु नहीं, भक्तों पे विश्वास नहीं, इस तरह से कुछ भी हो, इस तरह से धीरे 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 चलते हुए कहीं ना कहीं वो पहुंच जाता है। अब दूसरा प्रश्न, ठीक है वो बाधा को हम निकालने का प्रयास करेंगे, अब उनकी कृपा क्या है महाराज, वो तो बताओ क्या है उनकी कृपा, कहां है उनकी कृपा, किस तरह से, मतलब कहां मिलता है, कैसे समझ में आएगा कि ये कृपा मिली है हमको। बहुत ही सरल बात है, जैसे मैंने कहा नित्यानंद प्रभु बलराम जी खुद दिखा रहे हैं, उनका सबसे बड़ा गुण क्या है, क्यों अपने आप को विस्तृत हुए हैं, सेवा करने के लिए, अलग अलग तरीके से सेवा करने, तीव्र इच्छा कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा, और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कुछ भी रूप लेने के लिए तैयार है, कुछ भी सेवा करने के लिए तैयार है, पादुका बनने के लिए तैयार है, शैया बनने के लिए तैयार है, छतरी ऊपर बैठने के लिए तैयार है, नीचे बैठने के लिए तैयार है, साइड में बैठने के लिए तैयार है, सर के ऊपर बैठने के लिए तैयार है, केवल कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, जिस रस में भी चाहे सेवा करना चाहते हैं, अनंत शेष सेवा चाहते हैं, ब्रह्मा जी शिव जी कृष्ण की सेवा चाहते हैं, हमने सुना है इसे, दिखने में मामूली लगता है, पर जब तक ऐसे पवित्र दिनों में शास्त्रों के आधार पर श्रद्धालु भक्तों के संग में बार बार, क्यों प्रभुपाद बार बार यही कहते हैं, बार बार वही कहते हैं, ये तो सुना है यार, फिर से क्यों, ये सुना है पर समझा नहीं है, समझते तो शायद काफी प्रगति कर जाते हम लोग, पर समय गंवाना, समय दूर अभी गया नहीं है, जिस दिन हमें यह समझ में आएगा उस दिन हमारे लिए वैकुंठ का द्वार, भगवत धाम का द्वार खुल जाएगा। सेवा ही एक आश्रय है, क्यों आश्रय, केवल बलराम जी गुरु तत्व जो है हमको आश्रय देते हैं, क्या आश्रय है, हम इस दुनिया में किस चीज का आश्रय ले रहे हैं, घर का आश्रय ले रहे हैं, पैसे का आश्रय ले रहे हैं, शरीर का आश्रय ले रहे हैं, मैं इतना शक्तिशाली हूं, मैं किसी के सामने ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा, पर ये क्या है, ये शरीर एक क्षण के अंदर कुछ पैरालिसिस हो गया तो मुंह में कुछ डालने नहीं, नाक से ट्यूब लगाकर खिलाना पड़ता है, क्या ये शरीर, इतना अहंकार शरीर का आश्रय ले रहे हैं, पैसे का आश्रय करोड़पति रोड पे आ जाता है दो दिन में, घर का आश्रय अगर भूकंप हो गया तो घर सर पे आ जाता है, आश्रय हमको निराश्रय कर देता है, किस चीज का हम आश्रय ले रहे हैं, केवल एक ही आश्रय है, आश्रय वो चीज है जो हमें कभी निराश्रय नहीं करेगा, और वो कौन सी चीज है, भक्ति, क्यों, क्योंकि भगवान भक्त और भक्ति ये शाश्वत है, ये शाश्वत है। दूसरा, गुरु तत्व के द्वारा हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं, शास्त्रों के द्वारा, शास्त्रों का निचोड़ निकालकर गुरु जो हैं
अपने जीवन में उसको समझकर, अपने जीवन में उतार कर, अपने जीवन के उदाहरण से और अपने वचनों से दूसरों को निवेदन करके बोल रहे हैं, दंते तृणधरी वही नित्यानंद प्रभु जो घास के टुकड़े लेकर रोमहर्षण का सर काट दिए उसकी अहंकार देखकर, वही जगाए मदाई के दंते, वही घास के टुकड़े को दांत में रखकर पैर पर पड़ के बोल रहे हैं कृपया गौरांग का नाम ले ले, क्यों अपना समय बर्बाद कर रहा है, भज गौरांग लहो गौरांग लहो गौरांग नाम रे, एक बार अगर तेरे मुंह से गौरांग निकला तो मेरा प्राण बन जाएगा, मैं तेरे तुझे संरक्षण दूंगा। ये बलराम जी की कृपा है, एक सेवा, केवल गुरु की कृपा से हमको भगवान को प्रसन्न करने का एक मौका मिलता है। ये सेवा मामूली नहीं है जो भी मिला है। कभी कभी लोग पूछते हैं प्रभु जी मेरा तो कोई सेवा ही नहीं है क्योंकि मंदिर बंद रहता है हमेशा, है क्या सेवा इधर, केवल संडे खोलता है। गुरु ने सेवा दिया है ऑलरेडी, वो सेवा क्या है, नाम जपो, ये नाम सेवा, सेवा है, ये बहुत बड़ी सेवा है, इसको अच्छे तरह से करना क्योंकि इसके द्वारा कृष्ण प्रसन्न होते हैं, ये गुरु का आज्ञा है। कम से कम 16 माला ध्यान, जितना हो सके ध्यान पूर्वक हर रोज अच्छे तरह से जपो, ये बहुत बड़ी सेवा है गुरु की, ये कृष्ण का आलिंगन है जीव का, उस समय डायरेक्टली भगवान हमारे जीवा पर आते हैं गुरु के कृपा से, उनके वचन के से बद्ध होकर वो आते हैं और उनके साथ हमारा संपर्क हो रहा है, ये बलराम जी की कृपा है। नित्यम भागवत सेवया, प्रभुपाद जी ने इतने ग्रंथ लिखे किस लिए, पढ़ने के लिए, बांटने के लिए नहीं, केवल वो कहते थे मैं लिखा हूं पढ़ने के लिए, ये भागवतम से भागवत सेवया। और जब भी यहां सत्संग होता है आके बैठो, बोलेंगे प्रभु जी बैठने बैठे, बैठना ही बहुत बड़ी सेवा है, सो जाओगे तो भी सेवा है चलेगा, पर यहां सो आके इधर सामने बैठ के, क्यों, क्योंकि जब आप यहां आके बैठ रहे हो आप जोर जोर से प्रचार कर रहे हो कि मेरे जीवन में यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज है और कोई चीज महत्वपूर्ण है, सर्वधर्मान परित्यज्य, यहां आके मैं बैठ रहा हूं। अगर हर रोज ये नहीं, अगर हफ्ते में एक दिन नहीं करोगे सर्वधर्मान परित्यज्य, मृत्यु के समय सब छोड़ोगे कैसा। तुकाराम की पत्नी थी ना, तुकाराम महाराज की पत्नी, बोले उन्हें उसको गाय को खिलाना एक मिनट, उसके बाद आऊंगा, ठीक है आमचा राम राम की हवा। वो महान लोग हैं उनके, मतलब मैं उदाहरण कह रहा हूं, अगर जैसा फाइनल एग्जाम उधर है, टेस्ट होता है ना, छोटा मोटा टेस्ट होता है, डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, अरे वीकली टेस्ट में सर्वधर्मान सब कुछ छोड़कर अगर भक्तों के संग में कृष्ण कथा हो रही है और वहां हम लोग आके बैठ नहीं सकते, दो मिनट बैठ नहीं सकते या दो घंटा बैठ नहीं सकते, चाहे मन करे या ना करे, अगर प्रामुख्यता यहां नहीं दे पा रहे हैं तो फिर कैसे दे पाएंगे हम दूसरे समय। इतना कृपा मिल रहा है, भगवान ऐसे खड़े आलिंगन, आजा बेटा, बोले अभी टाइम नहीं, तू ऐसे हाथ नीचे रख, बाद में आऊंगा अगले संडे। तो बलराम जी आश्रय देते हैं और शक्ति देते हैं, आध्यात्मिक आश्रय और आध्यात्मिक शक्ति। आध्यात्मिक आश्रय सेवा से मिलता है और आध्यात्मिक शक्ति मिलती है शास्त्रों के अध्ययन, गुरु के वाणी से। जिस हद तक उस वाणी को, प्रभुपाद ने एक बार लिखा चिट्ठी अपने एक भक्त को लिखा, यू जस्ट फॉलो माई इंस्ट्रक्शन एंड आई विल किक माया विथ माई बूट्स, तू अगर मैं जो बोल रहा हूं 16 माला जप करना चाहनी मैं को पालन कर, तू इसे कर, फिर मैं माया को लात मार के निकाल दूंगा। माया को लात मारना, प्रभुपाद जी ऐसे कैसे कह रहे हैं, क्योंकि बलराम जी के शब्द बोल रहे हैं, महामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तांतरंदिते, वो कर सकते हैं, उनके आज्ञा के अनुसार वो बोल रहे हैं, मैं नहीं कर सकता, भगवान कर सकते हैं, बलराम जी करेंगे। और अंत में प्रवचनकारों का एक अच्छा तरीका होता है, अंत में, अंततः, तो एट लास्ट, तो अंतिम कुछ शब्द में, ऐसे करते करते आधा घंटा पौना घंटा चढ़ता रहता है, तो अंत में नहीं, अंत के पहले वाला स्टेप और उसके बाद मैं अंत करूंगा. तो झूठ नहीं बोलना चाहिए व्यासासन पर बैठकर. पर इसमें पांच पॉइंट जो बनाया था उसका पांचवा पॉइंट है और लास्ट पॉइंट इसमें पॉइंट में, उसके बाद कुछ शायद बोलूंगा. इस कृपा को कैसे प्राप्त करें? बलराम जी की कृपा जो है आज के दिन, जो सेवा है, जो मार्गदर्शन है, शास्त्रों का ज्ञान है, जिसका हम लोग हर बार यहां प्रयास करते हैं, हर एक अपने अपनी यथाशक्ति चर्चा करने की, ये कैसे स्वीकार करें? जैसे एक बीज है, ये सेवा या मार्गदर्शन जो है या आज्ञा भगवान गुरु क्या, एक बीज है. बीज बहुत शक्तिशाली बीज है, पर जमीन भी तो अनुकूल होना चाहिए ना. अगर जमीन एकदम कड़क हो सीमेंट जैसा, उसके ऊपर बीज डालोगे वो बढ़ेगा ही नहीं. पर अगर वो उपजाऊ हो, खुला खुला, उसको खेती लोग पहले क्या करते, पहले उसको तोड़ फोड़ के ढीला ढीला करते, पहले ढीला रहेगा तो बीज अंकुरित होगा और बाद में फल आएगी, पेड़ होगा. इस तरह से गुरु सदगुरु जो बलराम जी के प्रतिनिधि हैं, उनके वचन जो शक्तिशाली बीज है, वो हमारे हृदय में आरोपण कैसा होगा? जब हृदय थोड़ा उपजाऊ और थोड़ा मुलायम होगा. तो उपजाऊ और मुलायम हृदय को करने का मतलब क्या है? कृतज्ञता होना हृदय में, टू बी ग्रेटफुल. ये कृतज्ञता कैसे आएगी महाराज? कौन से मार्केट में मिलता है? कितना भाव, कितना किलो, कितना खरीद के लेके कान से नाक सब घुसा के हृदय में ठूस ठूस के भर दूंगा, कितना क्या करना है बोलो इसके लिए, कहां मिलता है? भागवत के छठे स्कंद में अजामिल के प्रसंग में प्रभुपाद जी कुछ देते हैं किस तरह से करना है. अजामिल का कैसा परिवर्तन हो गया, एक दिन के अंदर परिवर्तन हो गया, वापस सुधर गया हो, बलराम जी की कृपा मिल गई उनको. कैसे? यमदूत को देखने के बाद. पर उतना देर हमको नहीं करना चाहिए, विष्णु दूत को देखे, विष्णु दूत से द्वारा सुने, वो सुनने के बाद उनका जो जीवन परिवर्तन हो गया. और उसमें पांच चीज प्रभुपाद जी बताते हैं, और ये पांच चीज करने से प्रभुपाद जी बोलते हैं, तात्पर्य में लिखते हैं कि आप भी भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकते हो, गुरु की कृपा को प्राप्त कर सकते हो. तो ये पांच चीज मैंने एक बार प्रवचन में बोला तो हमारे एक आईआईटी के एक भक्त बैठे हुए थे, उन्होंने सुना, सुनकर उसको अपने आईआईटी के हृदय में, अपने ब्रेन में उसका एनालिसिस किया, और एनालिसिस करने के बाद उन्होंने ब्रह्मसूत्र जैसा एक शब्द, सूत्र, एक मंत्र निकला उनके मुंह से, रगड़. मैंने कहा ये क्या भाई रगड़, किस चीज को? किसके द्वारा क्या रगड़? बोले नहीं, आपने जो प्रवचन दिया ना पांच पॉइंट, उसका मैंने एक सूत्र बनाया रगड़. अच्छा, बोला क्या ये रगड़, मेरे को बताओ. जो मैंने बोला मेरे को ही नहीं मालूम. बोले आपने पांच जो चीज बोला, वो पहला था रिग्रेट. रिग्रेट मतलब पश्चाताप. अजामिल को जब यमदूत आए, विष्णुदूत आए, उनका बातचीत हुआ, क्योंकि इसका फंसा हुआ था, निकल रहे थे, आधा निकाल दिए थे उसको यमदूत, और तब जो बातचीत हुआ, क्योंकि ऐसा परिस्थिति, ध्यान से सुन रहा था उनका बातचीत, कि मेरे को अभी जन्म मृत्यु का सवाल है, अभी खींच के ले जाएंगे, ये ले जाएंगे कि ये ले जाएंगे, कोई एक ले जाएगा. तो ध्यान से सुन रहे किसका जीत होगा, बड़े ध्यान से सुन रहे थे वो. उतना ध्यान से अगर हम प्रवचन सुने ना, आज ही हमारा जीवन सफल हो जाएगा, क्योंकि मृत्यु का पास नहीं लगा है, उसकी गंभीरता नहीं है, इसीलिए अजामिल जैसे नहीं सुना, सुनते हम लोग. पर उस समय क्योंकि वो एक्चुअली देख रहा था यमदूतों को, इसीलिए वो इतना डरा हुआ था, उसको समझ में आया, बाप रे, मैं जो कार्य किया इसके द्वारा यही मेरा लक्ष्य था. बहुत ही उसको पश्चाताप हुआ कि मैं अच्छा ब्राह्मण था, अच्छा कार्य कर रहा था, एक क्षण के बुरे संग से पूरा जीवन मैंने बर्बाद किया. और तो सबसे पहले उस जीवन का, कृष्ण भावना में आने से पहले, भक्तों से मिलने के पहले जीवन का पश्चाताप, कितना समय मैंने बर्बाद किया, काश जन्म से ही मैं कृष्ण भक्त होता. दूसरा ए यानी एप्रिसिएशन, एप्रिशिएट. आप सोचो, अगर भक्त मेरे जीवन में नहीं आते, अगर कृष्ण कृपा करके कोई भक्त को मेरे जीवन में ना नहीं भेजते, और वो भक्त के द्वारा हमें ये ज्ञान नहीं मिलता तो आज मेरी परिस्थिति क्या होती। कितने कृपालु हो भगवान, मैं कहीं भटक रहा था उसके बीच में कोई आके मेरे को कुछ सुना के गया, किसी ने मेरे को पुस्तक दिया, किसी ने मेरे को प्रसाद दिया, किसी ने मुझे कुछ माला दिया, किसी ने कुछ कुछ तो बताया, किसी ने खींच पूछ के लाया कहीं से। इस तरह से एप्रिशिएशन फॉर द इंटरवेंशन, कोई तो मेरे जीवन में आके नरक की ओर पूरे रफ्तार से जा रहा था, 90 किलोमीटर पर आवर हाईवे में जा रहा था, किसी ने उसे रोका, रोक के न केवल रोका उस गाड़ी को, मोड़ के वापस भगवत धाम की ओर प्रेरित किया जाने में। तो एप्रिसिएशन, अगर वो ना होता तो क्या परिस्थिति होती मेरी। तीसरा, स्वाभाविक रूप से ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति, के ये अगर नहीं होता तो क्या हो सकता। इसलिए कृतज्ञता पूर्वक मिला, मैं मेरी कोई योग्यता नहीं है पर कृतज्ञता पूर्वक उसे स्वीकार करना। फिर जिस हद तक ये कृतज्ञता है उस हद तक तपस्या, ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी का मतलब फिर से मैं उस मार्ग में नहीं जाऊंगा। मुझे अभी बताया गया मांसाहार नहीं, नशा नहीं, व्यभिचार नहीं, जुआ नहीं, कम से कम 16 माला, और ज्यादा अपेक्षित नहीं किया जाता भाई, जस्ट 16 माला, जस्ट चार नियमों का पालन बस। नरक और भगवत धाम में अंतर केवल चार नियम और 16 माला जप, सचमुच में कुछ भी नहीं है। ये भगवान ने कंसेशन रेट में फ्री सेल कर दिया है महाप्रभु ने। तो तपस्या, और उस तपस्या को बड़े दृढ़ता पूर्वक करना, डिटर्मिनेशन। और वो तपस्या और दृढ़ता तब आएगी जिस हद तक हमारे हृदय में पश्चाताप पिछले जन्म का या पिछले जीवन का, सारे गलतियों का, और अप्रिशिएशन के भगवान के भक्तों ने अपने जीवन में आके कुछ परिवर्तन किए, और तीसरा कृतज्ञता। जिस हद तक ये तीन चीज होगी उस हद तक हमारी तपस्या भगवान को प्रसन्न करेगी और हमारी दृढ़ता किसी हालत में बनी रहेगी, डगमगाएंगे नहीं हम। और खास करके वो नित्यानंद प्रभु के रूप में बहुत ही सरलता से उपलब्ध है, क्योंकि बलराम थोड़े क्रोधित हो जाते हैं, सीधा प्रहार करते हैं वो, पर नित्यानंद प्रभु ऐसे नहीं है, क्योंकि अलग भावना में आए, अलग मूड में आए वो, तो उस मूड का फायदा लेना चाहिए, गलत फायदा नहीं, सही फायदा। अब मैं अंत कहूंगा, ये कब तक चलेगा नहीं मालूम, पर अंत है, अंत का पॉइंट। अभी जन्माष्टमी आ रही है और जन्माष्टमी के 8 दिन पहले बलराम जी प्रकट हुए, तो अब इस बलराम जयंती में हमें एक प्रमुख लेसन, एक पाठ, सीख क्या सीख लिए। मैं सोच रहा था, 2 दिन से सोच रहा था प्रवचन में क्या बोलूं, मैं क्या सीखूं, प्रवचन में बोलना तो बड़ा आसान है, मैं क्या सीखूं। तो 2 चीज मुझे लगा, एक, भगवान देवकी के गर्भ में अवतरित होने से पहले पहले षड गर्भ का हत्या हुआ कंस के द्वारा, तत्पश्चात बलराम जी अवतरित हुए और उस परिस्थिति को अनुकूल बनाया देवकी के गर्भ को भगवान के आने के लिए, और तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ। पहले षडगर्भ निकले, षडगर्भासुर असुर थे एक्चुअली, वो लोग निकले, तत्पश्चात बलराम जी आए और अनुकूल परिस्थिति बनाए, प्रतिकूल चीजों को निकाला, अनुकूल चीजों को बनाया, तत्पश्चात भगवान अवतरित हुए। तो मैं सोच रहा था हमारे हृदय में ये जो षडगर्भ है इसको कैसे निकाले, बलराम जी के से क्या सीखना है हमें, कि भगवान को, भगवान के अलग अलग अवतारों को, भगवान के भक्तों को, गुरु को न कभी मिनिमाइज, क्या बोलते हैं, उनको कम करना, नीचा देखना, कभी एटलीस्ट हमारी दृष्टिकोण से हम किसी को, अगर किसी तरह से भगवान कोई किसी की भक्ति कर रहा है, किसी तरह से टिका हुआ कुछ तो लड़खड़ाते हुए जा रहा है, करेगा वो जाने भगवान जाने, और वो ये नीचा दिखाने का या ईर्ष्या या अहंकार, ये देखो कैसा है, अभी भी मलमूत्र विसर्जन कर रहा है मैं, तो ये या अहंकार से हो रहा है या ईर्ष्या से हो रहा है या अज्ञान से हो रहा है, पर जिस कारण भी हो रहा है ये गलत हो रहा है, इसको हटा देना, इसको निकालना पड़ेगा हमारे हृदय से। दूसरा, किसी ना किसी तरह से अलग अलग प्रकार से जो निंदा होती है हमारे मुख से, महाप्रभु ने जब अमोघ निंदा किया महाप्रभु का, बोले तू ब्राह्मण है, इस जीवा से तू विष पी रहा है। अब हर बार हमें याद रखना है, महाराज बार बार बोलते हैं, हमने कई सन्यासियों से सुना है, हर बार चाहे वो किसी भी कारण से किसी एक भक्त के प्रति कुछ उसकी परछाई जो अंधेरे पक्ष की, एक जगह लाइट है पीछे अंधकार होता ही है हर एक का, तो उसके बारे में अगर चर्चा कर रहे हैं, भले कृष्ण कथा के बीच में एक छोटा सा पिल्लू छोड़ दिया, फिर भी तुला माहिती है ते काय केला, इसका मतलब समझ लेना, वो अमृत के बीच बीच में साइड में रख के एक ग्लास लेके थोड़ा विष पिया और फिर भी के अमृत पी रहे, एक्चुअली विष पीने के बराबर है। महाप्रभु कहते हैं, बोले अमृत पियो, जिस जीवा से तूने निंदा की अब उसी जीवा से तू हरिनाम ले, उसी भक्तों का गुणगान कर, बस गुणगान नहीं तो कम से कम मन ही मन सोच, छोड़ दे वो और कृष्ण के बीच, क्यों हम अननेसेसरीली अपना लंगर फंसा के रखें। अनुकूल वातावरण क्या करें, अनुकूल वातावरण बनाने के लिए हमेशा भगवान और भक्तों का केवल गुणगान करें और गुणगान सुने। मम मन मंदिरे निशिदी कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी आमंत्रण करना चाहिए, प्रभु आप आइए, इस गंदगी को मैंने निकालने का प्रयास किया है, इस विष को निकाला है, अब मैं हरिनाम ले रहा हूं, कृपया आप मेरे मन मंदिर में आइए। और एक भक्त समाज के रूप में बलराम जी के आज के दिवस पर, बलराम जयंती के आज पवित्र दिन पर, जहां बलराम जी की खास कृपा है, एक भक्त समाज के रूप में हम क्या करें, फिर भी वही एक कम से कम ये जो स्थान है, ये हमारा हृदय, आपके हृदय भी एक मंदिर जैसा है, उसका थोड़ा विस्तार कीजिए, ये प्रांगण जो है मंदिर का जो प्रांगण है, ये हमारे भक्त समाज का ये हृदय है, इस हृदय को कम से कम हम पवित्र रखने का प्रयास करें, इसमें से षड गर्भ को दूर करें, कम से कम इस प्रांगण के अंदर हम वचन ले कि न कभी बुरा देखेंगे, न कभी बुरा सुनेंगे, न कभी कुछ बुरा बोलेंगे। बापूजी के तीन बंदर, ऑफ कोर्स हरि कथा में तीनों बंद मत करके बैठिए, हरि कथा में हमको क्या बोलते हैं वो कछुआ जैसे होना चाहिए, यहां जब आएंगे आंखें फाड़ के रखिए, कान खोल के रखिए, मुंह बंद रखिए चलेगा मुंह बंद रखिए, क्योंकि इकट्ठा करना है, बाद में बाहर जाके खोलिए, जो सुना उसको दोहराइए, पर यहां आके भी कचरा इकट्ठा करने आए तो फिर यहां आए क्यों हम लोग, आप सोचिए यहां हम लोग आए क्यों, हम यहां आ क्यों, इतना क्या क्या, इतना वो रंकाला का पानी बहता रहता है, आंबई टैंक के पास बस रुकता है, वहां से चल के आना फिर चल के जाना, क्यों आ रहे हैं यहां आके, यहां आ क्यों रहे हम लोग, इतना तपस्या क्यों ले रहे हैं, शुद्धिकरण के लिए, तो इस जगह को कम से कम पहले गंदगी निकाले यहां से। और वो गंदगी कैसा है, आप सोचिए हर बार, एक बार राधानाथ स्वामी महाराज ने बोला, राधा गोपीनाथ मंदिर में प्रवचन दे रहे थे और किसी भक्त ने पूछा कि बड़े सीनियर डिवोटी भी कभी कभी ऐसा भक्त के बारे में मैं बोलता बोलते हैं तो मैं क्या करूं, एक माता जी ने पूछा, तो महाराज जी ने बताया कि सबसे पहले आप कान बंद करके बोलो, माता जी आप ये मत बोलो मुझे नहीं मालूम, आप कुछ चर्चा करेंगे चलो हरे कृष्ण महाराज ने बोले, फूल बनाते बनाते वो ऐसा बोला उसने, तो बोला आप ऐसा करो, और फिर उन्होंने कहा अगर आपको बोलना ही है ना वाचो वेगम, प्रेशर आ गया है तो चौपाटी में जाके निकालो या रंकाला के पास इधर जा, वहां मलमूत्र विसर्जन करने जाते झाड़ी के पीछे कहीं, यहां मत करो, महाराज ने बोला, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, बोले हर बार तुम ऐसे कहते हो किसी भक्त के बारे में निंदात्मक रूप से या इस भावना से वो ऐसा है, ये ऐसा ऐसा है, तो बोले तुम अपने मुख से मल निकाल रहे, मल विसर्जन कर रहे। तो कम से कम इस प्रांगण को शुद्ध रखें, अच्छी तरह से एक अनुकूल मतलब प्रतिकूल वातावरण यहां से निकाल दें। तपस्या, तपस्या के रूप में, क्योंकि इसीलिए हम लोग आए। दूसरा, एक अनुकूल वातावरण बनाए, अनुकूल वातावरण बनाए भौतिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से। भौतिक रूप से कैसे, क्योंकि यह धाम है, जो जैसे हमने कहा यहां अनंत शेष है नीचे, ये धाम है, ये आप मत समझिए ये कोल्हापुर के रंकाला का हरिओम नगर का एक छोटा सा इतना ब्लॉक बाय इतना फीट एक लैंड है, ये लैंड नहीं है, ये धाम बन गया जब अनंत शेष यहां आए और अंदर विराजमान है। तो इस धाम को अच्छी तरह से एक 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 ऐसा अनुकूल माहौल बनाए, वातावरण बनाए, जिससे यहां आने के बाद आश्रय मिले और मार्गदर्शन मिले। ये बलराम जी की कृपा, आश्रय और मार्गदर्शन इस चीज के लिए आ रहे हैं हम लोग। यहां आश्रय के लिए आ रहे हैं और स्फूर्ति मार्गदर्शन के द्वारा आध्यात्मिक जीवन में स्फूर्ति लेने के लिए आ रहे हैं। और कोई उद्देश्य नहीं हमारा, अगर और कोई दूसरे कोई उद्देश्य है तो बहुत ही दुर्भाग्य है, यही केवल बस। और सारे आप सब भक्तों की कृपा से, आपकी प्रार्थना से और आपके आशीर्वाद से, एटलीस्ट भौतिक रूप से ये वातावरण अच्छी तरह से बनाने का प्रयास है। हमारे पिछले मैनेजिंग कमेटी की तीव्र इच्छा थी कि शौचालय का इंतजाम हो, भक्तों के लिए थोड़ा अनुकूल क्या बोलते हैं सुविधा, बच्चों के लिए अच्छी तरह से इधर उधर भागते हैं तो हम लोग बोलते हैं चुप बैठ, कम से कम एक जगह बैठने का जगह हो उनका, कुछ वो भी कुछ सीखे, वो भी कुछ आश्रय ले। तो जो उनकी इच्छा थी वो आज के ईबी के कमेटी ने बड़े तीव्रता से उसको, गंभीरता से उसको लिया है। और कुछ भक्त हमारे मिलिंद प्रभु एकदम एक्टिवली मैं देख रहा हूं बहुत ही सामने आकर वो जिम्मेदारी ले रहे हैं। और हमारे इदाते प्रभु उन्होंने वचन दिया है कि दोनों तैयार होगा जन्माष्टमी से पहले, तो बलराम आप सब प्रार्थना कीजिए बलराम जी थोड़ा शक्ति दें उनको, जल्द से जल्द हो जाए। और ये मंदिर के लिए भी आपने देखा होगा सुंदर रंगोली, आप बैठ गए होंगे उठने के बाद देखिए। तो इस तरह से अंदर का भी जो वातावरण है, खास करके कुछ भक्त रति मंजरी माता जी जय श्री माता जी पिछले 1.5-2 महीने से वो सोच रहे थे, मैंने बोला उनको कुछ सोचो आप किस तरह से आप यहाँ भक्तों की इच्छा है कि अच्छा अनुकूल वातावरण बने, तो बहुत सारे सजेशंस सारे भक्तों ने दिया और उन लोगों ने कुछ चीज़ों को बड़ी गंभीरता से ली। और पिछले 3-4 दिन में न केवल वो और शीतल माता जी और उज्ज्वला गोपी माता जी और गोपे नाम नहीं उज्जवल गोपी का और सोनाली माता जी 11 बजे रात को 3 बजे तक बैठकर कुछ तैयार करते थे। और भी कुछ खास एडिशन आने वाला है जन्माष्टमी से पहले, उन्होंने बहुत सारा योजना की है इसके, और सारे भक्तों ने कई सारे भक्तों ने मदद किया है इसके लिए। और खास करके हमारे बजरंग बली प्रभु गोसरवाड़ के उनकी कृपा से आज बलराम जी के उत्सव पर हम बलराम जी को एक खास गिफ्ट अर्पण कर रहे हैं, उन्हीं का स्वरूप एक्सटेंशन, और वो आप दर्शन करेंगे अभी। मैं हम देख रहे थे भक्त लोग देख रहे थे कि तुलसी आरती जब होती है तो कोई भी टेबल इधर स्टूल पड़ा था उसको ले जाते थे वो, तो हमने सोचा कि अच्छा सा एक टेबल बनाए, क्योंकि नहीं तो उसके ऊपर सीढ़ी चढ़ने के लिए उसके ऊपर वो टेबल के ऊपर ही खड़े होता है। तो हमने सोचा ये बलराम जी का स्वरूप है जिसको भगवान के सारे ये सामने पड़ा शैया उनका आसन, तो हमने कहा कि तुलसी महारानी के लिए 2 अच्छे टेबल होनी चाहिए। तो वो इच्छा को पूर्ण किया हमारे बजरंग बली प्रभु ने, सुंदर बनाया है वो भी, हम लोग आज बलराम जी की प्रसन्नता के लिए ऑफरिंग कर रहे हैं, और भी सुंदर पेंटिंग और कर्टन, हमारी इच्छा है कि एक अनुकूल, भौतिक रूप से कम एक अनुकूल वातावरण जो आंखों को अच्छा लगे और एक प्रेरणा मिले, पर उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण आध्यात्मिक वातावरण वो तब जब हम प्रण लेंगे आज के दिन बलराम जी के सामने कि हम मुंह खोलेंगे तो भक्तों का गुणगान करने के लिए और भगवान का गुणगान करने के लिए, कम से कम इस प्रांगण में। तो निश्चित रूप से मुझे विश्वास है जब आसन अच्छा होता है तो भगवान की इच्छा होती है आके बैठने के लिए। तो ये षडगर्भ अगर निकालेंगे, और बलराम जी एक्चुअली मंदिर बलराम जी से अभिन्न है, मंदिर की जो सेवा है वो डायरेक्टली बलराम जी की सेवा है, चाहे वो कलेक्शन की सेवा हो इनडायरेक्टली दूर से या डायरेक्ट कुछ सेवा हो, एक्चुअली बलराम जी का दिया हुआ ये आश्रय है और हमारी कृपा है। तो इसको जब हम स्वीकार करेंगे, बलराम जी आएंगे और एक अनुकूल वातावरण बनाएंगे, तो निश्चित रूप से भगवान आकर्षित होकर यहां विराजमान परमानेंटली होंगे, ये शास्त्र कह रहा है। जहां षडगर्भ निकल गए, जहां बलराम जी की कृपा मतलब गुरु की कृपा हुई, अनुकूल वातावरण हुआ, तो स्वाभाविक रूप से कृष्ण वहां अवतरित होंगे ही। और एब्सोल्युटली अंत में मैं निष्कर्ष में कहना चाहता हूं, आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आज हमने क्या चर्चा की। सबसे पहले हमने चर्चा किया कि बलराम जी कौन हैं, कृष्ण के ही द्वितीय स्वरूप हैं, सबसे अच्छे सेवक हैं और गुरु तत्व हैं। उनका जरूरत हमारे जीवन में क्या है, उनकी कृपा के बिना हम भगवान को समझ नहीं सकते, भगवान का गुणगान नहीं कर सकते, उनको कृपा प्राप्त करने की क्या बाधा है, क्योंकि हम किसी ना किसी तरह से भक्तों को या गुरु को या बलराम जी को नीच दिखाएंगे अगर कृष्ण के संबंध में, तो यह अपराध हो सकता है। उनकी कृपा क्या है, आश्रय है सेवा के द्वारा और शक्ति मिलती है मार्गदर्शन के द्वारा, गुरु के वाणी के द्वारा, और इसे स्वीकार करना है तो रगड़ रगड़ के हमारे हृदय में ये पांच चीज के तीव्र पश्चाताप, एप्रिशिएशन भगवान की कृपा मिली है, कृतज्ञता और तपस्या दृढ़ता के साथ, और इस तरह से अगर करेंगे तो षडगर्भ निकालेंगे और बलराम जी की कृपा होगी तो निश्चित रूप से भगवान हमारे जीवन में वैयक्तिक से और इस समाज में और इस तरह से इस विश्व में भी हरिनाम संकीर्तन के द्वारा प्रकट होंगे। तो आज के दिन ये हम प्रार्थना कर सकते हैं कि ये षडगर्भ हमारे हृदय से और इस समाज से निकले, भगवान बलराम जी की कृपा हो और कृष्ण का जल्द से जल्द अवतर हो। श्री कृष्ण बलराम की, श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे।